त्रुटिपूर्ण, अभी देखो कि जिसमें त्रुटियां नहीं है वो कैसा है, ये है हमारे गुरुदेव शुद्ध भक्त प्रभाव यथारूप। गीता दी संसार को, $7 से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, ये भी केंद्र प्रभुपाद की देन है। हमारे ऊपर होता तो हम छोड़ देते इस जगह को, जबरदस्ती प्रभुपाद ने जगह लेके दी हमारे ऊपर। ये नहीं हमारे गुरु भाई कहते थे प्रभुपाद यहां बड़ी समस्या है हमें नहीं यहां रहना, प्रभुपाद कहते नहीं मुझे यही जगह चाहिए। आज देखो उनको सब दिख रहा था यहां तक, अभी यही जगह भी कम पड़ रही है, कितनी दुनिया आ रही है। प्रभुपाद जी को कितने सालों पहले देखा, सारा संसार उन्हीं की देन है। जहां कहीं थोड़ी बहुत भक्ति हो रही है, भक्ति तो बहुत होनी चाहिए, सब श्रेय इनका है, क्रेडिट इनका है। अगर कोई डिसक्रेडिट है तो वो हमारा है, क्योंकि हम त्रुटिपूर्ण हैं, हम उल्टे सीधे काम करके सब डिसक्रेडिट इकट्ठा कर रहे हैं। तो त्रुटिपूर्ण शरीर से जो ज्ञान निकलेगा त्रुटिपूर्ण होगा। हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। इससे पहले मेरे प्राणंत हो, आत्मा शरीर को मेरी छोड़े, वो छोड़ेगी, आपकी भी छोड़ेगी, मेरी की भी, इनकी भी, उनकी भी, सब की। मैंने ये त्रुटियों को छोड़ना है, इनको निकालना है जीवन से, और ये त्रुटियां यथारूप में राम जी की कथा श्रवण करने से, भगवत गीता यथारूप में श्रवण करने से, भागवत यथारूप में श्रवण करने से ये त्रुटियां निकलेंगी। प्रभुपाद ने निकाल के दिखा दी सारी दुनिया के लोगों की। अगर त्रुटियों में रहते हुए मेरा शरीर छूटा तो फिर नरक प्रतीक्षा कर रहा है, फिर मुझे उसमें से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं अगर तपस्या करता हूं तो बच पाऊंगा, नहीं करता हूं तो नरक में चला जाऊंगा। इसलिए 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। आवाज क्यों कम कर दी तुमने, आवाज कम थी, कम। इनके दर्शन करने के लिए भगवान कह रहे हैं, क्यों? ये सबके लिए आएंगे, इसे कोई बच नहीं सकता। भगवान भी आए वो तो दिव्य हैं, वो भी चले गए। तो कथा बड़ी संक्षेप में हो रही है, समय बड़ा कम है। तो रावण जो है बड़ा दुष्ट है। जब शूर्पणखा, कल शूर्पणखा का वृतांत चल रहा था, ये जो शूर्पणखा की घटना आपके महाराष्ट्र में ही घटी थी, चाहे शूर्पणखा बाहर से आई, आई जरूर यहां पर, शूर्पणखा का प्रभाव आज भी है। आज सारी स्त्रियां जो हैं शूर्पणखा का अनुसरण कर रही हैं। शूर्पणखा का अनुसरण नहीं करना, सीता माता का अनुसरण करना है, सीता माता के चंद चिन्हों पर चलना है, तपस्या करनी है। जैसे मां ने तपस्या की, महल छोड़ दिए, पति को वनवास हुआ तो चले गए, मैं नहीं रहूंगी यहां, ये है सती नारी। पर बुराई को जीव बड़ा जल्दी पकड़ता है, बद्ध जीव है ना, बुरा है इसलिए बुराई को जल्दी पकड़ता है। जब जीव मुक्तावस्था की ओर आगे बढ़ता है तो फिर वो बुराई को नहीं पकड़ता, पर बद्धावस्था में बुराई ही पकड़ी जाती है। हम जब इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं तो बुराई बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं हम। तो शूर्पणखा के अनुयायी बहुत हो गए हैं, लेकिन सीता माता के अनुयायी बनना है हमने। शूर्पणखा राक्षसी थी, और राक्षसियां जो हैं वो अपना वासनाओं को व्यक्त कर देती हैं। राक्षसियां अपनी वासनाओं को छुपाती नहीं, लेकिन भारतीय नारी का गुण क्या है, भारतीय नारी कभी भी अपनी वासनाओं को व्यक्त नहीं करती, ये भारतीय नारी की महानता है। लेकिन विदेशी आज सबसे ज्यादा यहां घुसी है महाराष्ट्र में, फिल्म इंडस्ट्री यहीं पर है, कितना दुष्प्रभाव इसका पूरे भारत में, पूरे संसार में, हिंदुस्तानियों पर है। सब लोग अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं और विदेशियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, इसका विचार करो। इसलिए भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। प्राणी जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के तुम रोज दर्शन करो। क्यों ये आ रहे हैं? इसके लिए अगर तूने तैयारी नहीं की, मेरी शरण में तू नहीं आया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो तुम्हारी गति खराब हो जाएगी, तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। श्री कृष्ण तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। फिर भी अगर मुझे नरक में ही जाना होगा तो फिर उसमें कृष्ण भी क्या करेंगे या उनके शुद्ध भक्त क्या करेंगे? मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, नरक में जाने से बचाने का प्रयास किया, दुर्योधन नहीं समझा। तो शूर्पनखा ने सारा पंगा शुरू किया, कोई दोष राम जी का नहीं, कोई लक्ष्मण भगवान का नहीं है। पहले कहती राम को मेरे साथ शादी कर लो, भेष बदल लेते हैं राक्षस। फिर राम जी ने टाला, जाओ लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण जी ने फिर वापस भेजा। अब ये उल्टा स्त्री सीता माता को मारने लगी तो क्या करते हैं राम, बताओ ना, इसको दंड दो। ये नहीं है तो समझने वाली, कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, उसको बातों से समझ नहीं आती। तीन प्रकार के व्यक्ति उसमें उपदेशामृत में प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कौन है? वो सुनता है कि चोरी करना पाप है, वो नहीं करता, प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, सुना कोई असर नहीं होगा, उसने चोर को ले जाते देखा तो उसको समझ आई हो इसने चोरी की, पुलिस ले जा रही है, इसकी दुर्गति होगी, जेल में बंद हो जाएगा, ये नहीं करता, द्वितीय श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी का कौन? सुना देखा कोई ऐसा नहीं, चोरी की, पुलिस का डंडा पड़ा, समझ आया। अभी समझने का लाभ क्या? फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत, अभी होश आने दे क्या है? तो हम डंडे से समझने वाले बन गए हैं सारे, वो अच्छा नहीं। बातों से समझे, और बातों से हमें तब समझ आएगी मेरी अपनी प्यारी आत्माओं माताओं, जब हम भक्त बनेंगे, जब इंद्रियों के तर्पण में त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, तब मुझे बातों से समझ आएगी, नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगी। तो शूर्पनखा ने पंगा लिया, आक्रमण हुआ, खरदूषण ने अटैक कर दिया भगवान राम और लक्ष्मण पर 14,000 राक्षसों के साथ, तो उनका वध कर दिया भगवान ने। उनमें से एक राक्षस अकंपन बच गया था, उसने देखा राम लक्ष्मण को, माता जानकी को देखा। माता जानकी जो है ना, वो लक्ष्मी जी का अवतार है, और लक्ष्मी जी से ज्यादा सुंदर कौन होगा? लक्ष्मी माता जो है वो जानकी जी है। तो राक्षस वृत्ति कंपन, जब 14,000 जो राक्षस मारे वो बच गया, क्योंकि और पंगा खड़ा करना था, उसने सबको मरवाना था। वो रावण के पास पहुंचा पहले जाकर के, उसने कहा कि देखो लंकेश, उसने शक्ति भी बताई भगवान की, बड़े शक्तिशाली है, तुम ऐसा करो, देखो 14,000 राक्षसों को, खरदूषण को मार दिया, तुम जाओ, उसकी पत्नी जो है वो बहुत सुंदर है, बड़ी रूपवती है, और तुम्हारी पटरानी बनने के लायक है। अभी एक राक्षस दूसरे राक्षस को उकसा रहा है, पाप बुद्धि जो है ना, जब तक पापियों का दमन नहीं होता ना, वो नहीं समझती, इसलिए राक्षसों को मारना ही पड़ता है, बातों से नहीं समझेंगे को। तो तब रावण जो है वो मारीच के पास आया, मारीच ने भी राम जी की शक्ति बताई उसको, भाई देखो उनसे पंगा मत लो तुम, राम लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली हैं, क्योंकि राम जी ने बिना फर के बाण मारा था मारीच को और 100 योजन दूर जाके फेंका था। अभी मारीच जो है ना मामा रावण का, वो भक्त बन गया है, योगाभ्यास कर रहा है, कहता मैं भाई डर गया ना, वो बड़ा भयभीत हो जाता, राम जी के नाम से भयभीत हो जाता था। उसकी मदद मांगने के लिए रावण आया, रावण ने समझा बुझा करके उसको वापस जाने की सलाह दे दी। रावण वापस चला गया। फिर जब अकंपन ने आकर उसको कहा बड़ी सुंदर है, तो रावण अभी पागल राक्षस है, रावण दिमाग खराब है उसका, ब्रेन डिपार्टमेंट बिल्कुल डाउन है उसका। कारण देखो, ब्रेन डिपार्टमेंट में भगवान ने बड़े छोटे छोटे स्क्रू लगा रखे हैं जो आप देख भी नहीं सकते। एक कंप्यूटर क्या है, भगवान ने ये कंप्यूटर बहुत पहले बनाया हुआ है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, ब्रेन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर में छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, और जब जीव तो करता है भक्ति भगवान की तो स्क्रू टाइट रहते हैं। नाम जपता है जीव, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, स्क्रू टाइट रहते हैं। लेकिन जब जीव शरीर के स्तर पर आकर इंद्रियों के तर्पण में लग जाता है, हैं? जैसे बॉलीवुड वाले सिखा रहे हैं, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, हैं? जब ये होता है तो स्क्रू लूज हो जाते हैं। स्क्रू जब लूज हो गए तो ठीक तरह समझ नहीं सकता मैं क्या कर रहा हूं, पागल हो जाता है वो। देखने में ठीक दिखेगा लेकिन वो पागल है। और शरीर के स्तर पर होने के कारण वो पागल हो जाता है। तो रावण भी पागल है। अरे पागल, तेरे पास इतनी औरतें हैं, एक से एक अच्छी। रावण की जो पटरानी थी ना मंदोदरी, वो सती नारी में नाम आता है उसका, साधारण स्त्री नहीं थी वो। बोलो मंदोदरी माता की। राक्षस की पत्नी भी सती है, महान आत्मा, अच्छा कोई भी हो सकता है। तो लेकिन रावण राक्षस है, पागल है। जब अकंपन ने आके उसको कहा तो उसका आया मारीच की मदद, मारीच ने समझाया, भाई बड़े राम जो हैं वो भगवान हैं, मुझे याद है मेरी क्या गति कर दी थी उन्होंने, खर दुश्मन को मार दिया। तुम देखो, अगर तुम राम जी से पंगा लेते हो, रावण को कहा, अगर तुम मुझे भी साथ ले जाते हो तो फिर मेरा तेरा मरना निश्चित है, हम दोनों मर जाएंगे, मारीच कह रहा है। तो रावण के दिमाग में थोड़ी सी मामा मारीच की बात आ गई और रावण वापस चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर माता स्वरूप न खा गई, नाक कान कटे हुए हैं उसके, वर्णन इसमें आता है वाल्मीकि रामायण में, स्तन भी काट दिए थे लक्ष्मण जी ने उसके, उस उल्टा स्त्री के नाक कान काट दिए उस राक्षसी के। उसने आकर के फिर बड़ा उकसाया, उसने भी देखो झूठ बोला करके, ये नहीं कि मैंने पंगा लिया, कहती देखो देखो राक्षस कैसे होते हैं, सीखो उनका चरित्र, राक्षस कोई मत बनो, भक्त बनो, भगवान मिलेंगे। ये नहीं है कि सिंह जी आएंगे तो तब राक्षस समझे जाएंगे हम, अगर मैं झूठ बोलता हूं, इंद्रियों के तर्पण में लगा हूं, पर स्त्री की तरफ मेरी बुरी नजर, तो मैं राक्षस हूं, मेरी राक्षस वृत्ति है। तो सूपनखाई इतना अपने अपने भाइयों उनको खर दुश्मन को मरवा दिया, उधर से 14,000 राक्षस मरवा दिए। अभी रावण को क्या कहती है, ध्यान से सुनो, कहती है देखो दो वनवासी आए हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं ही, पर उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है राक्षसनी, और मैंने जब उसको देखा तो मेरे मन में आया वो तेरी पटरानी बनने लायक है, बकवास कर रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये नहीं बताया मैंने पंगा लिया था, मैं शादी करना चाहती थी तो भगाया मेरे को, तेरी पटरानी बनने के लायक है, मैंने जब प्रयास किया उसको तेरे के लिए लाने के लिए तो उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, मेरी ये गति कर दी, है झूठ बोल रही है नहीं। इसी से विनाश होता है, कहा है कि विनाश काले से विपरीत बुद्धि। रावण भी पापी है, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मेरी बहन ने भी कोई पंगा लिया होगा, ये भी बदमाश है, मेरी बयान कोई सही थोड़ी है, लेकिन नहीं सोच सकता। जो आदमी भक्त है वही ठीक तरह सोच पाएगा, जो भक्त नहीं है वो बस बेकार का सोचेगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, क्या हुआ? तो पहले अकंपन ने बताया था, अभी उसकी बहन बता रही है। रावण फिर पागल हो गया। रावण कहता है अच्छा, अभी मारीच के पास फिर आया, वो दोबारा आया मारीच के पास। मारीच के पास आया और मारीच को कहा कि तुम चल मेरे साथ, तुम स्वर्ण मृग बन जाना और सीता को बहलाना, और फिर सीता कहेगी इस मृग को लाने के लिए तुम राम को दूर ले जाना, और दूर जाकर के जब तेरा बद राम कर दें, मृत्यु पहले ही तेरे की मार दे तेरे को, तो तुम जो है सीता और राम की आवाज निकालना, लक्ष्मण को भी सीता वापस भेज देगी भाई की सुध लेने के लिए, तब मैं आके अपना काम करूंगा, चोरी करूंगा, सीता का हरण करूंगा। आई मारीच ने फिर बड़ी सुंदर शिक्षा दी। हरि बोल। ये बड़ी सुंदर शिक्षा, बाकी तो संक्षेप में कर रही हैं, मैं वहां से पढ़ के आपको बताना चाहता हूं मारीच ने क्या कहा, ये कृपया आप सब ध्यान रखो। मारीच ने साहस पूर्वक कहा, प्रिय राजन, शब्द सब ध्यान दो, चापलूसी करने वाले तो सुलभ हैं। क्या है? सारे बोल दो, आपको भी ताकि याद रहे। माताओं क्या है? सारे बोलो। अरे बोल ही नहीं रहे। चापलूसी करने वाले सुलभ हैं, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए अप्रिय सत्य वचन बोलने वाले दुर्लभ हैं। ये बात याद रखने वाली है सबको। ये काम, ये बात अगर आपकी समझ में आ गई ना, हमारी समझ में आ गई, तो जीवन हमारा सफल हो सकता है। हम चापलूसों की बातों में आ जाते हैं, औरतें भी चापलूस हैं, मर्द भी चापलूस हैं, क्योंकि भक्ति नहीं बढ़ी ना कुछ भी। कोई अगर ठीक मार्ग पर चलता तो उसको भटका देंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? जो खुद भटका है वो नहीं चाहता दूसरा जो है भगवान की तरफ जाए। मंत्री को ना पूछे जाने पर भी उचित परामर्श देना चाहिए, मारीच कह रहा रावण को, विशेषकर जब राजा पथ भ्रमित हो रहा हो। ये मारीच कह रहा है। अभी मारीच क्यों इतनी अच्छी बातें कर रहा है? क्योंकि राम की कृपा उसको मिल चुकी है, उसने अपनी राक्षस वृत्ति का त्याग कर दिया है। मारीच साउंड ज्यादा करो, कम क्यों मुझे चिल्लाना पड़ा। मारीच जो है वह साधु बन गया है, योगाभ्यास कर रहा है, इसलिए वो अच्छी बातें कर रहा है। पहले तो मारीच को भी कुछ समझ, मारीच ने कितने ऋषि मुनियों को तंग किया था, कितनों के यज्ञ विध्वंस किए थे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा, राम जी की कृपा मिल गई। तो रावण जो है वो पथ भ्रष्ट है, भ्रमित है। तो मारीच कह रहा है कि जब राजा पथ भ्रमित हो जाए तो मंत्री को उसे बिना पूछे ही सलाह देनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो अच्छा परामर्श नहीं लेना चाहता। कहा भी है ना, विनाश कालेच विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है ना, उसकी अकल काम नहीं करती। अब रावण का विनाश आ चुका है, इसलिए रावण की बुद्धि, रावण की अकल काम नहीं कर रही, रावण पागल हो चुका है। हे राजन, यदि हम आपकी योजना का पालन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम दोनों की अंततः मृत्यु ही होगी। भक्त है ना, समझ गया सारी बात, मृत्यु ही होगी। तथापि यहां आपके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं युद्ध भूमि में एक श्रेष्ठ शत्रु के हाथों मरूं। अतः चलें, तुरंत प्रस्थान किया जाए। इससे पहले मारीच ने और कुछ कहा। जब शिक्षा देने लगा मारीच रावण को, तो रावण क्या कहता है, मारीच मैं तेरे से शिक्षा लेने नहीं आया, तेरे से सहयोग लेने आया हूं। अगर तू मेरे साथ चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं तेरा गला काट देता हूं। तब मारीच ने सोचा, इस कम भक्त रावण से मरना जो है अच्छा, राम जी के हाथों ही मरो, मार दो, मरना तो मुझे है ही, बच में सकता है नहीं गया तो ये कम भक्त मुझे मार देगा, गया तो राम मार देंगे। किससे मरना अच्छा है, कम भक्त रावण से या राम से?
राम
से। तो मारीच ने निर्णय लिया कि मैं इस दुष्ट रावण से नहीं मरूंगा, मैं राम जी के हाथों मरता हूं। तो रावण ये समझकर पसंद था कि मारीच अंत में उसकी चेतावनी की गंभीरता को समझ गया। उसने मारीच का आलिंगन किया, गले लगाया, कहते बेटा हम दोनों जल्दी मरने वाले हैं, मामा मारीच गले लगाया, उसने गले लगाया कि मरने वाले पापियों को। रावण कभी अंत समय तक रावण ने नहीं सोचा कि मैं हारूंगा, राक्षस बुद्धि है, अंतिम समय तक नहीं उसने सोचा। सब मरवा दिए, कुंभकर्ण को मरवाया, मेघनाथ मरवाए, बड़े बड़े योद्धा मरवा दिए, आखिर में खुद लड़ने गया और कुत्ते की मौत राम जी के हाथों मारा गया। बोलो रामचंद्र भगवान। और वे रावण के वायु रथ पर सवार होकर चल दिए। उनके वनों, नदियों, नगरों और मैदानों को पार करते हुए वे दंडकारण्य बन पहुंचे, जिसके निकट राम, सीता एवं लक्ष्मण निवास करते थे। अभी मारीच ने क्या किया, संक्षेप में कथा कर रहे हैं। स्वर्ण मृग बन गया, बड़ा सुंदर मृग बन गया, बड़ा सुंदर वर्णन है। मारीच जो मृग बना है, उसके शरीर उसका ऐसा बन गया जैसे सोने का, और ऐसे उसमें धब्बे जैसे जैसे मनियां लगी हुई हैं। उस सींगों का वर्णन आ रहा है, बड़े सुंदर सींग हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं, अति सुंदर मृग मारीच बन गया। और वो फुदकने लगा इधर से उधर, उधर से भगवान राम की भी नजर पड़ी, माता सीता की नजर पड़ी, तो माता बड़ी आकर्षित हो गई। बोलो सीता माता की मां कहती हैं, देखो भगवान, देखो वो कैसा सुंदर मृग है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इसको पकड़ के ले आओ, मैं इसको पालतू बना लूंगी, अगर जिंदा नहीं मिला तो इसकी मृगशाला लेके आओ, इसकी मृगशाला इसकी बड़ी सुंदर होगी। तो राम जी ने देखा, राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मुझे लगता है ये कोई राक्षसों की चाल है। लक्ष्मण जी दोनों भगवान हैं, एक राम जी का ही स्वरूप लक्ष्मण भी हैं, विष्णु तत्व हैं दोनों। तो राम जी कहते हैं अगर ये राक्षस है तो फिर भी इसका वध करना जरूरी है। अभी सीता माता बड़ी जिद कर रही हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं आप नहीं जाइए, लेकिन सीता माता कहती है नहीं मुझे चाहिए, जिंदा नहीं मिला तो मरा हुआ ऐसे ही इसकी मृगशाला ही सही। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता माता को सौंपा, तुम सीता का ध्यान रखना, किसी भी हालत में सीता को छोड़ना नहीं, मैं इस मृग को जिंदा या मरा लाने के लिए जा रहा हूं। राम जी उस मृग के पीछे चल पड़े, बदमाश मारीच था, राम जी को दूर आगे ले जाकर वो लुप्त हो जाता था, फिर प्रकट हो जाए, दूर जाकर राम जी फिर वहां जाएं, फिर लुप्त हो जाए, ऐसे करते वो राम जी को बड़ा दूर ले गया, बहुत दूर राम जी को ले गया। और दूर ले जाकर के राम जी ने देख लिया कोई राक्षस की चाल है, इसका वध कर दो। पकड़ा तो ये जाएगा नहीं, राम जी ने उसको बाण मारा और मारीच जो है वो बस असली रूप में आ गया, मृग का शरीर छोड़ दिया। अभी मृग भी कहा, वो तो टेम्परेरी बना हुआ था ऐसे। आपको पता है जो भूत प्रेत होते हैं वो भी शरीर धारण कर लेते हैं, टेम्परेरी शरीर होते हैं उनके। भूत प्रेत कुछ भी बन जाएंगे, कोई भी शरीर वो धारण कर लेंगे, तो असली रूप में आ गया था। राम जी समझ गए कि ये दुष्ट मारीच की ही चाल थी। अभी जब मारीच गिरा, उसको रावण ने शिक्षा दी थी, उसने वो शिक्षा मानी उसकी, बोला हे सीते, हा राम, राम जी की आवाज उसने निकाली। उससे सीता माता ने सुन लिया। अब स्त्रियां बेचारी, चाहे वो सीता माता है, कमजोर दिल होता है स्त्रियों का स्वभाव, सुन लिया माता ने, लक्ष्मण ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई राम संकट में है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मां माता, मेरे भाई को, मेरे भाई अजय हैं, कोई उनको जीत नहीं सकता। उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम निश्चिंत रहो। तो माता घबरा गई क्योंकि राम जी की आवाज निकाली मारीच ने। माता कहती हैं, अच्छा ये तेरी भावना है, होनहार भी है, तू भरत का साथ दे रहे हो, भरत के साथ ही बन गए हो, राम की मृत्यु हो जाए और तुम मेरा भोग करो। अभी ऐसे शब्द कैसे लक्ष्मण जी सहन कर सकते थे। लक्ष्मण जी ने बड़ा समझाया, राम जी की आगे थी, सीता को मत छोड़ो, लेकिन लक्ष्मण जी ने समझाया, लेकिन सीता माता बहुत उल्टे सीधे शब्द कह रही हैं। अब देखो जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अपने अपने घर से ही लगा दिए बाकी रामायण वालों ने। असली रामायण वाल्मीकि जी की है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई। तो वाल्मीकि अपना रामायण ही सही है, उसका अगर आपने रामायण पढ़नी है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, आपको बातें यथारूप में समझ में आएंगी, मन शुद्ध होगा। अभी जब बहुत उल्टा सीधा कहा माता ने, यही तेरी चाल थी, तुम अपने भाई को मरवा करके बस मेरा भोग करना चाहते हो, तो ये कैसे सुन सकते थे लक्ष्मण भगवान, उनको जाना पड़ा। अच्छा माता मैं जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। जैसे लक्ष्मण जी गए, चोर रावण, कौन चोर रावण वहां छिपा हुआ था, दुष्ट रावण वहां छिपा हुआ था, और वो झट आ गया, घेरवे वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे वस्त्र जटाएं, सब साधु बना हुआ है, कपटी साधु। एक कपटी साधु तभी से बनना शुरू हुए रावण के समय से, पहला रोल रावण ने किया कपटी साधु का। आ गया, उल्टी सीधी बातें करने लग पड़ा, ब्राह्मण बन गया, खड़ाऊं पहनी हुई है, दंड कमंडल लिया हुआ है। कहते देवी तुम कौन हो, तुम इस वन में रह रही हो, तुम्हें तो महलों में रहना चाहिए, तुम कौन हो, वन की देवी हो या लक्ष्मी हो। बड़े बड़ी बातें की रावण ने, बहुत कुछ कहा, तो उल्टी सीधी बातें की, तुम माता को अच्छी तो नहीं लगी। फिर माता सोचने लगी ब्राह्मण आया है, इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो माता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, माता कहती हैं, सीता माता, मैं जनक जी की पुत्री हूं और मेरे पति भगवान राम हैं, हम अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं, उत्तर दिया। तो लेकर रावण कहता कि माता पूछती आप कौन हैं, अभी रावण कहता कि मैं रावण हूं, त्रिलोकी मेरे से डरती है, देवता लोग मेरे से भयभीत रहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना उससे ज्यादा पाया। तुम इतनी सुंदर हो सीते, तुम तो मेरे महलों में रहने के लायक हो, तुम यहां कहां वन में भटक रही हो? तुम चलो और मेरी पटरानी बनो। और कहते हैं कि वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में लंका की उस समय संख्या 32 करोड़ बताई हुई है। 32 करोड़ राक्षस मेरे अधीन हैं, 10,000 मेरी सेवा में रहते हैं, मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा, हम सब तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, तुम चलो। तो सती माता ने, सीता माता ने कहा कि तुम गधे का भी शब्द कहा उसका, तुम एक सयार होकर के एक शेर का मुकाबला करना चाहते हो? उल्टे सीधे शब्द कहे, सती नारी किसी के झांसे में नहीं आती। आजकल की लड़की जो है, लड़का कोई चार लड़का 9, 2, 11 हो बेकार हो, हैं? लड़कियों को झांसा देता है, ये कहते हो जाल में फंसा लेता, बड़ी लड़कियां जाल में फंस जाती हैं और बाद में जीवन बर्बाद हो जाता है, कहीं आत्महत्या कर लेती हैं, क्या क्या हो। कलयुग का प्रभाव बड़ा गंदा हो रहा है। सती माता, सीता माता, रावण को बड़ा दुत्कारा, बड़ा कुछ माता ने कहा, पर मेरे पास कहने के लिए समय नहीं है। तो रावण ने देखा ऐसे मानने वाले, तो रावण ने क्या किया, सीता माता के केस पकड़े, बाल पकड़े और उठा के रावण जो है सीता को चल पड़ा। अब माता चिल्लाने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी मदद करो। राम लक्ष्मण तो वहां है नहीं, मां चिल्ला रही है। तो देखो वो बात जो है उस समय क्या हुआ, माता का चिल्लाना जटायु जी को सुनाई दिया। बोलो जटायु जी महाराज की। जटायु एक गीत है, गीत जो है ना अछूत पक्षी होता है वो, लेकिन कितने महान। जब देखा तो जटायु जी ने रावण पर अटैक कर दिया, जब वो जीत नहीं सकते थे रावण से। और इतना वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, खच्चरें लगी हुई थी रावण के रथ में, खच्चरें खोते ही कह लो उनको, गधे ही, खच्चर जो है ना वो गधा और घोड़ा उनके संतान होते हैं वो। तो खच्चरें मार दी, सारथी को मार दिया, रावण के सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ के नीचे फेंक दिया। जिताओ ये बेचारे लहूलुहान हो गए, लेकिन युद्ध कर रहे हैं बड़े वेग से। ये भावना होनी चाहिए, जटायु से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर मेरा राम जी के लिए, कृष्ण के लिए मेरा अगर शरीर भी चला जाता है, मेरे शरीर के जाने की ये सार्थकता होगी। अगर मैं कुत्ते या बिल्ली की तरह गया, वो मेरे शरीर के जाने की निरर्थकता होगी, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अगर राम जी के लिए मैं मरा तो राम जी की प्राप्ति मुझे होगी निश्चित रूप से। तो वीर जटायु लड़ते रहे, बड़ी दुर्गति कर दी रावण की, लेकिन रावण ने सीता माता को नहीं छोड़ा। सीता माता को पकड़ के एक हाथ से युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है रावण, सीता को नहीं छोड़ रहा। माता चिल्ला रही है, माता के गहने गिर रहे हैं हाथ पांव से, जो है उनके, उन्होंने जो श्रृंगार उनका गिर रहा है। आखिर पीछे से अटैक किया, वो बड़ी वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, बड़ी दुर्गति रावण की कर दी जटायु जी महाराज ने। अभी क्या हुआ कि जटायु जो है पीछे से अटैक किया जब रावण पर, तो रावण ने एक हाथ से पीछे से तलवार उनको मारी और उनके पर काट दिए और जटायु बेचारे नीचे गिर गए। अभी क्या कर सकते थे। और दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता माता को बिना रथ के ही उड़ा के ही ले गया। रथ नहीं है अभी, रथ तो तोड़ दिया रावण का। आगे जब जा रहे थे स सीता माता बड़े मार्मिक वचन कह रही हैं। सीता माता जो वहां बड़ी दुखी है इस समय, और उन्होंने एक पर्वत पर बैठे हुए कुछ वानरों को देखा, तो उन्होंने अपने जो है ना गहने खोलकर एक अपने कपड़े में बांध करके उन वानरों को आगे फेंक दिए। तो यही राम जी को सूचना देंगे कि मुझे रावण उठा के ले गया। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, रावण जो है सीता माता को लंका में ले आया। लंका में लाकर के रावण ने सारे राक्षसों को कहा कि सीता को कोई कुछ नहीं कहेगा, सब इसका ध्यान रखेंगे, कोई इसको कटु वचन नहीं कहेगा, जिस किसी ने इसको कुछ कहा तो मैं उसको प्राण दंड दूंगा, जान से मार दूंगा। जब रावण सीता को ले जा रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए आकाश मार्ग में। ब्रह्मा जी ने कहा बस अभी हमारा काम सफल हो गया। क्या काम सफल हुआ है? अभी रावण मरेगा, सीता को ले जा मरेगा, वो बचने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी हमारा काम सफल होगा। उधर रावण ने जो है सीता जी को अशोक वाटिका में रख दिया, राक्षसी उनके आगे पीछे रख दी। अभी ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को कहा कि आप जाओ, जाकर के सीता माता को खीर उसका पान करवाओ, ऐसा ना हो कि सीता माता भूख प्यास से प्राण त्याग दें तो हमारा जो कार्य नहीं बनेगा, रावण का वध नहीं होगा। तो आप जाकर के सीता माता को दिव्य खीर का पान करवाओ। रावण अपना इंद्र जो है वो भेष बदलकर आए। आए जब तो उन्होंने कहा कि मैं इंद्रदेव हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, तो माता ये खीर का आप सेवन करो, इसके लेने से आप जो है ना आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी और आपको कोई वेदना भी नहीं होगी, कोई कष्ट भी नहीं होगा, रावण का कष्ट कोई आप पर प्रभाव नहीं कर सकेगा। तो सीता माता को शंका हुई, उन्होंने बोला कि ये जो तुम कैसे कह सकते तुम इंद्र हो? उन सोचा जी कोई राक्षस भेष बदल के आया है, बोले मैं कैसे समझूं कि आप इंद्र हैं या कोई राक्षस भेष बदल के आया है? तो इंद्र अपने असली रूप में आ गए, तो माता ने देखा कि वो धरती से ऊपर है, धरती के साथ उनके पांव नहीं लगे हैं इंद्रदेव के सुंदर। तो फिर उन्होंने समझा, तो खीर का जो है ना ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्र को भेजा गया और इंद्रदेव ने वो खीर दी। माता ने उस खीर का श्रवण किया, इसलिए माता भूख प्यास से रही थी। अभी वहां पर राम जी वापस आ रहे हैं मारीच को मार करके। जब वापस आ रहे हैं तो आगे लक्ष्मण जी रास्ते मिल गए। लक्ष्मण तुम सीता को अकेले छोड़ के कहां आ गए? तब लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। तब राम जी ने कुछ शब्द कहे, राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, स्त्रियां भावुक होकर हैं कुछ भी कह सकती हैं, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता ने मुझे ये कहा कि मैं भरत का साथी हूं, मैं आपको मारना चाहता हूं, उनका उपभोग करना चाहता हूं, तो मैं कैसे सुन सकता था? उन्हें जबरदस्ती, तो राम जी ने लक्ष्मण जी की गलती निकाली कि तुम्हें किसी हालत में वहां नहीं आना, वहां से नहीं आना चाहिए था। अभी राम जी बड़े दुखी हो गए। सीता के उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से या तो राक्षसों ने सीता को मार दिया है या उनका हरण हो गया है। आए वहां पर देखा पंचपटी में कुटिया वो खाली पड़ी हुई है, जाओ देखो अपने सरजू के किनारे तो नहीं भगवान के, कौन सी नदी है पंचपटी के किनारे? गोदावरी, सरजू नहीं, सरजू अयोध्या में है, गोदावरी के किनारे लक्ष्मण जी देखकर आ गए, वहां भी नहीं है। राम जी ने ये सोचा वो कहीं पानी भरने गई है आकर। राम जी बड़ा विलाप करते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। अभी राम जी भगवान ने तो कि सीता स्त्री के विरह में इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? बहुत सारी बातें समझाई हैं, शिक्षा दे रखी है कि स्त्री से जो अटैच होता है ना उसको दुखी होना पड़ता है। भगवान नर लीला कर रहे हैं ना, और प्रायः कलयुग में तो लोग स्त्रियों के ही गुलाम हैं। आप हो या नहीं हो? नहीं, हाथ खड़ा करो जरा। शादी की है? आई हुई है यहां पर? नहीं, वो तभी बोल रहे हो ना। कभी वो यहां होते तो फिर बोलते, मैं फिर सुनता। भोजन बंद हो जाना ना जाते ही। हाँ सर, हाँ अरे कोई, सब स्त्रियों के गुलाम हैं, हो ना, मेरा मिलाना मेरे को उसके साथ। हैं, कब मिलाओगे? आज ही मिलाओ। कहने की बात है, गुलाम नहीं। और बड़े बड़े देखे स्त्रियों के जोरू के गुलाम, कलयुग है ना। हाँ, अगर वो भक्त है, भक्त है, कितनी माला जपती है? माला नहीं जपती, फिर भक्त कह दीजिए। चलो भक्त है, माला कितनी जपती है? कोई माला नहीं जपती, ये ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? भक्त होगी तो माला जपती है, तो फिर गड़बड़ा, गुलाम जरूर है मेरा। तो स्त्री का जो बहुत सारी शिक्षा है, बाकी शिक्षा कहां लिखी हुई है? वो एक तो ये शिक्षा इससे मिलती है कि राम जी इस स्त्री के लिए नरलीला कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और एक शिक्षा मिलती है, स्त्री जो है ना स्वतंत्र नहीं है। भारत में भी ये मूवमेंट चल पड़ी है, हैं, वुमेन्स लिबरेशन। प्रभुपाद ने बिल्कुल भर्त्सना की है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है। अगर स्त्री स्वतंत्र, देखो अकेली सीता रही तो राक्षस रावण जैसा जो उनको उठा के ले गया। स्त्री बाल्यकाल में माता पिता द्वारा सुरक्षित है, यौवनावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में अपनी बड़ी संतान के द्वारा स्त्री को सुरक्षा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और भी कई शिक्षाएं आती हैं, तो माता सीता को अशोक वाटिका में रावण ने रखा हुआ है। अभी माता ने वो भी खीर का भी पान कर लिया। श्री राम वापस आकर के बड़े दुखी हो रहे हैं। अभी राम जी आगे चल पड़े, राम लक्ष्मण। अभी लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि भ्राता श्री, आप विलाप मत करो, चलो हमें निश्चित रूप से सीता की खोज करनी चाहिए, वो कहीं मिलेंगे जरूर, उनकी भेंट हमसे होगी। राम जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़े क्रोधित है राम जी। मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। बहुत सारी बातें राम जी ने की। मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं, खोज करते करते राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े, तो आगे उन्होंने क्या देखा? को बहुत बड़ा पड़ा हुआ, उन्होंने बोला कोई ये राक्षस है। क्या देखा कि वो पास में आके देखा तो जटायु जो है पड़े हुए, जटायु जी का बहुत बड़ा शरीर बताया है और लहू लुहान है। पहले जी भी लहू गिरा हुआ देखा तो राम जी को शंका हुई कि सीता का वध हो चुका है, राक्षसों ने मार दिया है सीता को। लेकिन आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जटायु का ये लहू है, जटायु लहू लुहान हो गया है और जटायु की रावण ने दुर्गति कर दी है। तो बड़ी कठिनाई से जटायु जी बोले राम जी के बताई सारी बात कि मैंने ऐसे सीता की रक्षा करना का प्रयास किया, लेकिन दुष्ट रावण के हाथों से मैं सीता जी को नहीं बचा सका। और इसी अवस्था में जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी राम जी यहां क्या कहते हैं, कहते मुझे सीता का इतना शोक नहीं है जितना जटायु जी के मरने का शोक है। इन जटायु जी ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मेरे लिए जटायु मर गए। धन जटायु, वीर जटायु। तो अभी लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण तुम चिता बनाओ। जटायु जी का शरीर चिता पर रखा और पुत्र जैसे पिता का मतलब चिता को अग्नि देता है, ऐसे ही भगवान राम ने जटायु जी की चिता को अग्नि दी। कितने भाग्यशाली जटायु जी हैं वो सीता। और मैं एक प्रश्न आपको करूंगा, सीता जी को वो नहीं बचा सके रावण के हाथों से, तो उनकी पराजय हुई या विजय हुई बताओ है? कैसे? एक दिन बोलो ना, हाथ खड़ा करके। बहुत बड़ी विजय हुई राम जी। और राम जी रोए जटायु के लिए, राम जी ने बड़ा विलाप किया। वो ये शब्द कहे कि मुझे सीता के खोने का इतना कष्ट नहीं है जितना जटायु जी के मरने का, ये मेरे लिए प्राण दे दिए। इसलिए हम सब जटायु जी महाराज की कृपा से राम जी के लिए मरना सीखें, राम जी के लिए प्राण त्यागना सीखें। तुम्हारे प्राण त्यागना जो है सार्थक हो जाएंगे। और अगर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह मरे हैं, विलासता का जीवन हमारा है और विलासता के जीवन से हम मरे, तो हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। हमारी सदगति नहीं होगी, हमारी दुर्गति होगी। तो राम जी ने संस्कार किया और आगे जब राम जी बढ़े तो कबंध राक्षस, कबंध राक्षस जो है कबंध राक्षस, वो जो राक्षस शरीर मिला था उनको राक्षस 8 माइल लंबी उनकी भुजाएं हैं, 8 माइल लंबी। एक आंख है, मुंह है बड़ा ऐसा। तो कबंध राक्षस ने पकड़ लिया दोनों भाइयों को अपने हाथों से। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु इस राक्षस को मुझे अर्पण कर दो और आप छूट जाओ, आप सीता माता की खोज करो। लक्ष्मण जी अपने, लक्ष्मण जी घबरा गए। लेकिन राम जी कहते हैं देखो लक्ष्मण, हम इस राक्षस का वध करेंगे। एक बाजू लक्ष्मण जी ने काटी, एक राम जी ने काट दी। जब बाजू काट दी तो कमंद बोला राक्षस, कौन से वो था वो शराब उसका तो लिखने अंडरलाइन करनी चाहिए नहीं बात है सारी। कमंद राक्षस जो है कैसे, तुम कौन हो? कहते हम राम हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम मेरा बड़ा सौभाग्य आपके दर्शन मुझे हुए, बस मेरा अभी समय आ गया कल्याण का। तो श्राप के वश याद है कुछ है किसको वो पूछ रहा हूं ना मैं, इंद्र के श्राप वश ये कोई देवता ही कबंध राक्षस बना हुआ था। तो अभी क्या हुआ, बोला मुझे जिंदा गाड़ के जला दो फिर मुझे अपना असली स्वरूप मिलेगा, आपके हाथों से मरने से ही मेरा कल्याण होगा। इंद्र ने मुझे ये कहा था, मैंने जब इंद्र से प्रार्थना की थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कि जब राम लक्ष्मण तेरे को जिंदा जला देंगे तब तुम्हें अपना असली स्वरूप प्राप्त होगा, तो आप मुझे जिंदा जला दो ताकि मुझे मेरा असली स्वरूप प्राप्त हो, फिर मैं आपको कुछ सीता जी के विषय में बताता हूं। तो कबंध राक्षस को ऐसा उन्होंने किया, जिंदा जला दिया। उसका अपना असली स्वरूप जो है वो देव शरीर जो है उसको प्राप्त हुआ। अभी वो कहता है कि आप इस दिशा में जाओ, वहां आपको सुग्रीव मिलेगा, वहां आपको हनुमान जी मिलेंगे और वो आपकी सीता को खोजने के लिए मदद कर सकते हैं। उनके सहयोग से आपको सीता मिल सकती है। कबंध ने बताया भाई, तो फिर भगवान राम भगवान लक्ष्मण जो हैं वो आगे बढ़े, कंपा सरोवर के तट पर आए, वहां पर मतंग ऋषि जी का, मतंग जी के वहां वन में, वहां मतंग ऋषि पहले रहते थे, अभी वहां शबरी जी का आश्रम है। और देखो जैसे ये बेरों का वर्णन आता है ना बाकी रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में ही नहीं है, जूठे बेरों का वर्णन नहीं है, अपने से जोड़ा हुआ है। शबरी जी का वर्णन है, शबरी जी की भेंट हुई और शबरी जी ने बड़ा सुंदर पदार्थ, वेर नहीं, बहुत सारे पदार्थ भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को अर्पण किए और उन्होंने स्वीकार किए। शबरी जी से बातचीत हुई भगवान राम की, और फिर भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं आगे के बढ़ो आगे की ओर बढ़े, तो दोनों भाइयों को ऋषिमुख पर्वत पर देखकर, अभी दोनों जो हैं वो ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं, तो पर्वत के ऊपर ये दोनों भाइयों को देखा सुग्रीव ने, तो सुग्रीव घबरा गया, क्योंकि सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था, और बाली सुग्रीव को मारना चाहता था जान से। बाली सुग्रीव दोनों भाई हैं, सुग्रीव जो है बाली के डर से श्रीमुख पर्वत पर वो रहता है, तो सुग्रीव घबरा गया। उन्होंने बानर अपना हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता करो ये कौन है। तो हनुमान जी की पहली बार भेंट राम जी से हो रही है, हनुमान जी एक भेष बदल के आए, बातचीत की, उन्हें पता लगा कि भाई राम जी ने सारी बात बताई, हम कौन हैं, क्या घटना घटी। तब हनुमान जी ने आके सूचना दी बाली जी को, अपना सुग्रीव को, कि ये बाली की आदमी नहीं है, ये राम लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के बेटे ऐसे। तो उनको लाया गया सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव और राम जी की मैत्री हुई। सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई बाली जो है मेरी पत्नी को मेरे से छीन लिया है, तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे भाई बाली को मार दूंगा। सुग्रीव कहता कि अगर आप मेरे पर ऐसी कृपा करें तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो बाली सुग्रीव की मैत्री हुई। अभी श्रीमुख पर्वत पर ये बानर जो बैठे थे, तो वो जो आभूषण माता सीता ने फेंके थे वो दिखाए राम जी को, तो राम जी ने सब पहचाने, सीता जी के आभूषण है। बोला अभी दक्षिण दिशा की ओर वो राक्षस जो है सीता जी को, सीता जी विलाप कर रही थी और दक्षिण दिशा की ओर राक्षस जो है उनको लेके गया है, तो आप चिंता मत करो, मैं अपनी सारी बानर सेना जुटा दूंगा, सुग्रीव कहते हैं, और हम सीता जी की खोज करेंगे और सीता जी को आपके साथ मिलाएंगे। सारा अपना वृतांत सुग्रीव जी ने सुनाया, अपना बाली के बारे में बताया, तो सुग्रीव को राम जी ने कहा कि तुम जाओ अपने भाई को ललकारो। सुग्रीव आकर के ललकारता है अपने भाई बाली को, बाली घर से बाहर आता है। जब घर से बाहर आता है तो दोनों का युद्ध होता है। बाली में बड़ी ताकत थी, बड़ी शक्ति थी। दोनों का युद्ध होने पर बाली को इतना मारता है, सुग्रीव को बाली इतना मारता है कि बाली घबरा के भाग जाता है। अभी बाली पीछे आ जाता, पर वहीं आ जाता, अभी राम जी को बाली, सुग्रीव कहता है कि ये अच्छी मित्री दिखाई आपने, मेरी हड्डियां तोड़ा दी, मेरी दुर्गति हो गई, कैसे मैत्री की आपने मेरे साथ। तो राम जी कहते देखो तुम दोनों भाई एक ही जैसे लग रहे थे, मैं तो बाली को मारना चाहता, मैंने कहा कहीं गलती ना हो जाए, तुम्हें मारना लग जाए ये तो अन्याय हो जाएगा, तो अभी तुम जाओ, एक माला पहना दी बाली अब सुग्रीव को, अभी तुम भाई को ललकारो। आई फिर ललकारा जब भाली बारा, तो भाली जाना चाहता है, तो उस समय उनकी पत्नी तारा ने रोका के, पतिदेव अभी मत जाओ, दोबारा आया है तो जरूर कोई गड़बड़ है। किसी के सहारे पर बड़ा समझाया, लेकिन फिर वही बात के विनाश काले से विपरीत बुद्धि। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रखा था, वो भी बड़ा पाप था। बाली में वैसे शक्ति बड़ी थी। बाली आ गया, बाली जब आ गया तो क्या हुआ, तो फिर आ गया, दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो भगवान ने बाण मार करके बाली का वध कर दिया। बाली बड़ा क्रोधित हो गया कि आपने मेरे किस दोष से मेरे को मारा, मैंने क्या किया, अगर आपको अपनी पत्नी से मिलना, मेरे पास आते मैं मिलाता आपको, आपकी पत्नी से आपने मेरे साथ धोखा किया है। क्या राम जी ने धोखा किया बाली के साथ? क्यों? हाँ, तो भगवान ने कहा देखो बाली, तुम बातें तो बड़ी करते हो, तुम पता कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, तुमने छोटे भाई की पत्नी को रखा है, सबसे बड़ा घृणित काम तुमने किया है। उस अपराध के कारण हमने तुम्हें यह मारा है। बाली ठंडा हो गया, पापा की मेरी गलती है। कहता अच्छा, भगवान ने कहा तुम्हें जिंदा कर देते, कहते नहीं अभी मैं आपके हाथों मर रहा हूं। बाली ने सुग्रीव भी वहां आ गया, उस समय अपना बेटा जो अंगद था वो सुग्रीव को सौंपा कि भाई ये बड़ा गुणवान है, इसका तुम ध्यान रखना, अभी सुग्रीव तुम राज करो, अभी मैत्री होगी दोनों भाइयों की फिर। और ऐसे ही जो है बाली जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो बाली जी को बताया कि सदगति हुई, क्योंकि राम जी के हाथों वो मरे। अभी सुग्रीव जी आगे राज मिल गया, उनको किष्किंधा का राज मिल गया। अभी सुग्रीव जी इतने समय से छुपे हुए थे बेचारे, अभी जब उन्होंने वचन दिया था कि हम ढूंढ निकालेंगे सीता माता को, खोज करेंगे, भोग विलास में पड़ गए। कौन? सुग्रीव जी महाराज भोग विलास में पड़ गए और अपना वचन दिया हुआ राम जी को भूल गए। राम जी उधर चिंतित हैं, चतुर्मास बीत गया, काफी टाइम हो गया। उधर से हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव जी को कि देखो महाराज, वानर राज, आपने वचन दिया था ऐसा ना हो कि राम आप पर कुपित हो जाएं तो अनिष्ट हो। तो सुग्रीव जी समझ गए। उधर से लक्ष्मण जी आ रहे थे, तुमने क्षमा मांगी। बस सुग्रीव जी निकले और उन्होंने जो है अपने सारे बानरों का आवाहन किया। सारे बानर बुला लिए, लाखों बानरों का वर्णन आता है, और उनको चारों दिशाओं में भेज दिया। अब सब जगह जाओ और सीता की खोज करो, जो कोई गड़बड़ करेगा उसको प्राण दंड मिलेगा। हनुमान जी को दक्षिण दिशा की ओर भेजा, और हनुमान जी जो हैं और उनके साथ अंगद जी और दूसरा वो क्या कहते हैं उनको, जामवती, सब उनके साथ में हैं। तो हनुमान जी को जो है उनको फिर पता लगा कि सीता माता जो हैं वह लंका में रावण के पास हैं। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर साथियों को एकत्रित करना और आदेश तथा लक्ष्मण का किष्किंधापुरी पर जाकर सुग्रीव को फटकारना तथा तारा का लक्ष्मण को युक्ति सम्मत सूचना वचनन उनको बताना तथा शांत करना, सुग्रीव का अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना, याचना करना तथा श्री राम से भेंट तथा उनको अपने सैन्य शक्ति के विषय में बताना। श्री राम जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए अपनी सेना को भेजना। श्री राम जी का हनुमान जी को अंगूठी देकर, अभी देखो राम जी पहले ही जानते थे कि हनुमान जी ही सीता जी की खोज कर पाएंगे, वैसे लाखों बाण चारों दिशाओं में चले गए, उनको अंगूठी देकर के भेजना के सीता जी की अगर आपसे भेंट हो उन्हें की अंगूठी मेरी दें, मेरा चिन्ह दें। तो हनुमान जी जो हैं वह बाकियों के साथ सबके साथ निकल पड़े और वो दक्षिण दिशा की ओर जाकर के उन्होंने सीता की खोज प्रारंभ की। हनुमान जो हैं आदि एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्षों के साथ वो जो कि बड़ा सुंदर सरोवर है वहां बैठ करके एक वृद्ध तपस्विनी जो है स्वयं प्रभा के दर्शन करते हैं और गुफा से समुद्र तट पर पहुंचने में उनकी वो मदद लेते हैं। अंगद का कार्य वा सिद्ध होने के कारण हताश होना तथा विलाप करना तथा संपाती से बांडरों का भय। अभी जब समुद्र किनारे दक्षिण दिशा में आकर के सब बैठे हुए हैं, चिंतित हैं कैसे सीता जी की हमें सूचना मिलेगी, तो जटायु का भाई संपाती, संपाती का बहुत बड़ा शरीर बताया है, संपाती जी जो हैं वो बैठे हुए हैं एक पर्वत के ऊपर, उन्होंने अपने भाई के बारे में सुना कि मेरा भाई जो है वो इतना महान था, उसने राम जी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। तो संपाती जी पहले सोच रहे थे ये बड़े बानर आज आगे इन सबको खाऊंगा मैं, पेट भरूंगा, लेकिन जब अपने भाई के बारे में सुना तो नीचे आए, बोले कि मेरे भाई के बारे में मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई को। उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने सीता जी की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे दी थी, प्राणों की आहुति दे दी थी। तब संपाती जी ने अपने भाई को जलांजलि अर्पित की और उन्हें कहा कि देखो मैं सीता की खोज ला सकता हूं पर मेरे पर जल गए हैं, मैं बाल्यकाल में सूर्यदेव के पास चला गया था, इतनी शक्ति थी संपाती में भी, मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं कि सीता जो हैं वो लंका में रावण के पास हैं। अभी सीता जी की सुधि संपाती जी से मिली, अब सबने हनुमान जी को प्रेरित किया कि आप ही जो हैं जाकर के सीता की सुध ला सकते हैं, सीता की खबर ला सकते हैं। तो हनुमान जी ने जय श्री राम बोलो रामचंद्र भगवान की, बड़े प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो भक्तों के रखवाले राम समुद्र के ऊपर शिलांग लगा दी, राम जी का नाम लेकर के एक वो शब्द आते हैं कि जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, मेरे पीछे बोलो फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम।
हरि से बड़ा हरि का नाम।
इसलिए नाम जो है ना, नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता। तो नाम हम सबको उपलब्ध है, लेकिन हम इतने भाग्यहीन है नाम ही नहीं जपते। बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, नाम नहीं जपते। नाम जपना है। तो हनुमान जी लंका में पहुंच गए, लंका में हनुमान जी पहुंच गए, और लंका में पहुंच करके हनुमान जी ने घर घर में खोज की। राक्षस लोग हैं, मदिरा पान करके सो रहे हैं, विशेष विकारों में राक्षस पड़े हुए हैं। कहीं भी हनुमान जी को सीता माता की सुत प्राप्त नहीं हो रही। अभी सीता माता जी जो हैं, उनको खोजने के लिए बड़े चिंतित हैं। हनुमान जी आकर खोज करते करते हनुमान जी जो हैं अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बहुत सारी राक्षसों के द्वारा घिरे हुए सीता माता को देखा। राक्षसियां सीता माता को बड़ा त्रास दिखा रही हैं, डरा रही हैं, क्योंकि रावण ने ऐसा आदेश किया था उनको, इसको डरा के धमका के मेरी पत्नी बनाओ, बस मेरी पटरानी बनाओ इसको। तो अभी हनुमान जी जो हैं अशोक वाटिका की शोभा देख रहे हैं। अशोक वाटिका कैसी, कितनी सुंदर है। उसमें कितने राक्षस पहरेदार हैं, भयंकर राक्षसियां जो हैं वो वहां पर बैठी हुई हैं। रावण वहां पर उन राक्षसों से घिरा हुआ वहां आ जाता है। आकर के वो रावण को देखकर सीता माता दुखी हो जाती हैं। रावण सीता को प्रलोभन देता है, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। लेकिन सीता माता जो हैं वे रावण को धिक्कारती हैं। सीता माता रावण की बातों में नहीं आती, और वो रावण के द्वारा चेतावनी दी जाती है। रावण जो है सीता जी को चेतावनी देता है कि 12 मास तक अगर तू मेरी पटरानी मेरी रानी नहीं बनी, उसके बाद मेरे रसोइये जो हैं तेरे टुकड़े करके मुझे भोजन के रूप में खिला देंगे। वैसे भी समय अभी काफी बीत चुका है, अभी समय पाकर हनुमान जी सीता माता जी के पास प्रकट होते हैं। हनुमान जी पर भी शंका हुई माता सीता को, ये भी कोई राक्षस भेष बदल के आया है। तो हनुमान जी ने जो मुद्रिका भगवान राम ने दी थी वो सीता माता को दिखाई। सीता माता को वो दी तो सीता माता ने जब राम जी की मुद्रिका देखी तो फिर उन्होंने पहचाना कि निश्चित रूप से ये राम जी के सेवक हैं। अभी हनुमान जी कहते हैं माता को, माता तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अभी जो है वापस ले जा सकता हूं। लेकिन सीता माता कहती हैं कि मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं एक पर पुरुष को स्पर्श करूं, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ के नहीं जा सकती, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो अच्छा माता तुम निश्चिंत रहो, मैं राम जी को तुम्हारी सूचना दूंगा, निश्चित रूप से राम जी आकर के इस रावण को मार करके तुम्हें यहां से ले जाएंगे। अभी रावण की जो अशोक वाटिका है हनुमान जी जो हैं उसको उजाड़ देते हैं, सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। पहरेदार वहां जाते हैं, उनको भी मार पीट करके हनुमान जी बड़ा विध्वंस करते हैं। आखिर हनुमान जी जो है वो इंद्रजीत के द्वारा ब्रह्मास्त्र के द्वारा बंध जाते हैं, दिव्य अस्त्र के द्वारा हनुमान जी को बांध करके इंद्रजीत यानी के मेघनाथ उनको ले आता है। रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। हनुमान जी ने भी समझाया रावण को, अभी देखो कि भगवान जो हैं ये रावण इतना दुष्ट था, हनुमान जी को भेजा पहले, बाद में फिर अंगद जी को भेजा गया है, अंगद जी भी आके समझाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि विनाशकालीच विपरीत बुद्धि, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब हनुमान जी को बांध करके रावण के पास लाया गया तो रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं, लेकिन रावण बड़ा क्रोधित हो रहा है, लेकिन हनुमान जी समझने वाले थोड़े हैं, दुष्ट के आगे झुकने वाले थोड़े हैं। तब रावण हनुमान जी का वध करना चाहता है, मारना चाहता है। तब भविष्ण जी ने हस्ताक्षेप किया और कहा, देखो राजन, दूत को नहीं मारना चाहिए, दूत है। तो रावण ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर इसकी पूंछ को आग लगा दो, फूंक दो इसको। जब पूंछ को आग लगाई तो रावण की लंका जो है हनुमान जी ने राख बनाई, रावण की सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया, फूंक दिया। लेकिन अब सब सोचने लगे, जब लंका जल गई तो सीता माता भी जल गई होंगी, लेकिन सीता माता जी की जो घर था अशोक वाटिका वैसी की वैसी रही, बाकी सारी लंका जल गई और दुर्गति हो गई। अभी हनुमान जी वापस आए अंगद जी को साथ लेकर, जामवान को लेकर के, उन सारे उनको वृतांत सुनाया, कैसे कैसे सारी भेंट हुई, मैंने सीता माता की खबर लेके मैं आया हूं। तो सारे बानर जो हैं इकट्ठे होकर मधुवन में जाकर वहां सुंदर फल खाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और समाचार जो है आगे सुग्रीव जी को दिया जाता है, सफलता का समाचार कि सीता माता की खोज हमको मिल गई है, सीता माता के पीछे पता चल गया है। तो हनुमान आदि जो हैं वो किष्किंधा में पहुंचते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, सीता देवी का सुखद समाचार सुनाते हैं कि सीता माता ठीक ठाक है। तो जब सीता माता की भेंट हनुमान से हुई थी तो तब सीता माता ने निशानी के तौर पर अपनी चूड़ामणि दी थी हनुमान जी को, राम जी को दिखाने के लिए। तो चूड़ामणि को देख करके भगवान राम विलाप करते हैं। अभी मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, अभी सीता जी की जब खोज मिल गई, पता लग गया, पहले पता नहीं था। असल में रावण को यह बर था कि तेरे को कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए रावण इतना अभिमानी हो गया था। लेकिन रावण को यह कहा कि मनुष्य को छोड़कर, तो रावण सोचता मनुष्य और बानर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। अभी भगवान ये नर रूप में आए हैं और बानरों की सेना से ही रावण का भी विनाश होगा। अभी जब हनुमान जी ने सूचना दी राम जी को तो राम भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। बोलो राम हनुमान की। और हनुमान जी सारा लंका का वर्णन कर रहे हैं, सारा बता रहे हैं, और उन्होंने आज्ञा दे दी कूच करने की, लंका पर चढ़ाई करने की। उधर से समुद्र के तट पर जब भगवान आए तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, तो भगवान ने दृष्टिपात किया समुद्र पर, तो सारा समुद्र में उथल पुथल होने लगा, समुद्र के बीच में रहने वाले जीव जो तड़पने लगे। तो समुद्र जट एक ब्राह्मण का रूप बना के आया और राम जी से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, यदि आप मेरे ऊपर से जा सकते हैं पर अगर आप पुल बना लो तो बड़ा अच्छा होगा। तो समुद्र पर राम जी की कृपा से पुल बना। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, और लाखों साल बना हुआ पहले पुल आज भी विद्यमान है। आज कलयुग की क्या दुर्गति हो गई है कि उस पुल को जो विमूढ़ शासन करता है, नास्तिक लोग जो हैं वो उस राम सेतु को मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना दुख की बात हो गई है। ये दोष हम सब हिंदुओं का ही है। हम हिंदू अपने राम के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, कृष्ण के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जो बुरे तत्व हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो हम पर हावी होते जाते हैं। हम पर हावी होते जा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं। पीछे आपने सुना होगा कि जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कहता कोई राम नहीं थे, कोई राम सेतु नहीं था, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय का देखो, समुद्र पर पुल कौन बना सकता है? समुद्र पर पुल केवल भगवान ही बना सकते हैं। राम जी को हम भगवान मानते हैं, पहला तो प्रमाण भागवत में है, दूसरा प्रमाण यह है कि समुद्र पर केवल भगवान पुल बना सकते हैं। इतना बड़ा समुद्र कोई मनुष्य उस पर पुल नहीं बना सकता। ये असंभव काम भगवान ही कर सकते हैं। तो अभी भगवान लंका पर पहुंच जाते हैं। अभी जब आ जाते हैं तो उधर भविष्य जी परामर्श देते हैं रावण को कि तुम सीता जी को लौटा दो, सीता को लौटा दो और अपने आप को सर्वनाश से बचा लो। लेकिन फिर वही बात के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रावण ने भविष्य को धक्का मार के अपनी लंका से निकाल दिया। रावण को भविष्य जी छोड़ करके राम की शरण में आ गए। अभी रावण जो है ना सबब ला करके कुंभकर्ण को बुलाता है। जब इन तीनों भाइयों ने तपस्या की थी, रावण कुंभकर्ण और भविष्य ने, तो कुंभकर्ण इतना विशाल काय था, बोला तो अगर ये जिंदा रहा तो सबको खा जाएगा, इतना बड़ा शरीर था। तो तब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो निद्रा देवी को भेजा, पहले सरस्वती माता को भेजा कि जाओ रावण की वाणी पर बास करो और रावण को जो है, रावण असल में चाहता था इंद्रासन, क्षमा कीजिए कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन। सरस्वती ने जुबान पर बास करके कहा निद्रासन, मुझे निद्रासन चाहिए, मुझे सोना तो तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। रावण 6 महीने सोता था, 6 महीने जब जागता था ना तो सबको खा जाता, दुर्गति कर देता, वो टनों के हिसाब से वो खाता था। तो उससे भी सलाह की, सीता हरण की सारी बात बताई, कुंभकर्ण ने भी फटकारा, कहते तूने जो सीता का हरण किया ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अच्छा तुमने मुझे भी जगाया है, तो कुंभकर्ण भी उसके भी दिन आ गए थे बेचारे के, तो उसने सारी वो सेना का भार अपने पर ले लिया। उससे इंद्रजीत और रावण द्वारा भविष्य का उपहास करना, तिरस्कार करना, तो इनके तिरस्कार पर ही भविष्य जी लंका छोड़कर, जैसे पहले मैंने आपको बताया राम जी की शरण में आ गए थे। रावण के द्वारा शुक को दूत के रूप से में भेजना तथा सुग्रीव को संदेश देना तथा श्री राम जी की आज्ञा से उसको अपना संदेश देकर पुनः रावण के पास भिजवाना। अभी श्री राम जी जो हैं समुद्र तट पर हैं, अभी समुद्र ने रास्ता दे दिया, रावण जी अभी पहुंच गए हैं, राम जी पहुंच गए हैं लंका में रावण के पास। रावण के गुप्तचरों ने श्री राम जी के बारे में और वानर सेना के बारे में रावण को बता दिया, परिचय दे दिया कि इसी वानर सेना लेकर के राम जी आए हैं। तो रावण ने धोखा किया कि धोखे से कटा हुआ सिर सीता जी को दिखाया कि देखो हमने तुम्हारे पति का वध कर दिया, ये देखो राम का सर, और नकली था, असली नहीं था। राम जी का नकली से सीता जी को दिखाया, लेकिन एक शर्मा नाम की जो एक राक्षसी थी उसने सीता को सांत्वना दी कि देखो ये रावण बड़ा मायावी है, तुम घबराओ नहीं, तेरे पति को कोई नहीं मार सकता। भेद खोला उसने शर्मा ने, और उसने श्री राम जी के आने का शुभ समाचार भी दे दिया कि राम जी यहां आ चुके हैं लंका में, और जल्दी ही तेरे को इस दुष्ट रावण से मुक्त करके राम जी तुमको अयोध्या में ले जाएंगे। माल्यवान जो थे उन्होंने रावण को श्री राम जी के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा, समझाया, लेकिन रावण कभी समझने वाला नहीं था। अभी जब रावण अभी वहां पहुंच गए सारे सुग्रीव आदि, तो रावण को दूर से सुग्रीव जी ने देखा, सुग्रीव जी झट भागते हुए वहां पर गए और जाकर के रावण के साथ कुतमुकुता होने लगा, मल्ल युद्ध हुआ काफी दोनों का, सुग्रीव जी का और रावण का। लेकिन सुग्रीव जी वापस आ गए, तब राम जी ने सुग्रीव जी को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इतने एक आवश्यक व्यक्ति हैं, कहते मुझे बड़ा क्रोध आया रावण पर, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। खैर राम जी की कृपा से सुग्रीव जी बचकर वापस आ गए। अभी राम जी ने अंगद को रावण के पास भेजा, रावण की खबर लेने के लिए भेजा, जाओ रावण की खबर लेके आओ, उसमें कितनी शक्ति है और उसको समझाओ। अंगद जी ने जाकर समझाया रावण को कि देखो तुमने ये जो किया ये ठीक नहीं किया, लेकिन रावण को ये विश्वास था मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं कि राम मेरे पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक साधारण राजा के बेटे हैं। लेकिन रावण क्योंकि राक्षस होने के कारण, राक्षस बुद्धि होने के कारण रावण ये नहीं समझ सकता था कि राम लक्ष्मण कौन है। भगवान को केवल भक्त पहचान सकते हैं, राक्षस नहीं पहचान सकते। और ऐसे ही एक वर्णन आता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगिए न भूजिए, जो प्रभुपाद जी से सच्चे वैष्णव जो होते हैं इन्हें भी आम लोग नहीं पहचान सकते ये क्या कर रहे हैं। देखने में कुछ दिखेगा लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऐसे एक चैतन्य लीला में कथा आती है कि एक हमारे आचार्य हुए पुंडरिक विद्यानिधि। पुंडरिक विद्यानिधि जो थे शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो एक बार गदाधर जो सीता जी अपना राधा जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में, उनको गोविंद जी कहते हैं, गोविंद दत्त जो भगवान के सेवक थे कि चलो मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन कराता हूं। तो गोविंद दत्त जी गदाधर जी को कहां ले आए? पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास। जब पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास उनको लाया गया तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े सुंदर मखमली गद्दे पर पुंडरीक विद्यानिधि जी बैठे हैं और पांच बारे हैं, एक उनको चमर कर रहा है, एक मोरपंख कर रहा है और सुंदर ऐसे लगता बड़ा विलासता का उनका जीवन है। तो तब गदाधर जो राधा जी के अवतार हैं उन्होंने गोविंद जी को कहा कि ये वैष्णव है या कोई विलासता की मूर्ति है? कहते ये परम वैष्णव है। कहते मैं भी बताता हूं। तब भागवत से एक श्लोक है कि कृष्ण कैसे हैं। जब पूतना राक्षसी कृष्ण भगवान को मारने के लिए, पूतनी भूतनी ही थी वो, मारने के लिए जब आई बड़ा सुंदर भेष बना लिया उसने, राक्षसी भेष बदल लेते हैं लेकिन सच्चाई सामने उनकी असली आई जाती है। अपने स्तन पर उसने जहर लगा रखा है, ये श्लोक का उच्चारण किया गोविंद जी ने। जैसे ये श्लोक भाई, इतने दयालु भगवान हैं, उस पूतनी को उस पूतना को हो कृष्ण भगवान ने वही पद दिया जो माता देवकी को दिया। भगवान के दया का वर्णन आ रहा है। तो जब ये दया का वर्णन हुआ तो पुंडरीक विद्यानिधि देखने में लगता है कोड़ा विलासी जीवन है इनका, विलासता का जीवन है, हैं भोग विलास में पड़े रहते हैं। जैसे ही सुना ये भगवान के बारे में, भगवान के दया के बारे में, उनका एकदम भाव जागृत हो गया। भाव जागृत होने से सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट हो गए, जिनका वर्णन भक्ति सामृत सिंधु में आता है। सात्विक भाव प्रकट हो गए और वो एकदम भाव विभोर होके जो मंच जहां पर बैठे हुए थे वो नीचे धड़म करते नीचे गिर गए, रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, हा कृष्ण हा राधे, कृष्ण की स्मृति में। तब राधा जी भी वहां बैठी हैं गदाधर जी के रूप में। कहते ओह ये तो वाकई वैष्णव है, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। कहने का अभिप्राय ये है वैष्णवों को भी नहीं कोई पहचान सकता, वैष्णवों को वही पहचान सकता जो वैष्णव हो, जो भक्त हो। और इसी प्रकार भगवान को भी कोई नहीं पहचान सकता, भगवान को उनके भक्त ही पहचान सकते हैं। तो रावण आखिरी दम तक ये सोचता था कि मैं राम लक्ष्मण को मार दूंगा और सीता से विवाह कर लूंगा, क्योंकि राक्षस बुद्धि है ना, भक्त नहीं। तो सार ये निकलता है मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, हमें भक्त बनना है। जब तक हमारा जीवन है, थोड़ा है या बहुत है, बस प्राथमिकता भक्ति को दो। प्राथमिकता अपने परिवार को या खाने पीने को या इंद्रियों के तर्पण को नहीं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित पीतोई। हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, जन्म अगर मैं गुरु हूं तो मुझे बहुत सारे चेले नहीं चाहिए। आज गुरु महाराज जो भी आता हो दीक्षा लो दीक्षा लो, ऐसे भी गुरु हैं दस दस हजार को कट्ठे दीक्षा दे देते हैं, पंद्रह पंद्रह हजार को, सम्मोहिनी विद्या उनके पास में, नर्क। भगवान कहते जन्म अनुयायी भी नहीं चाहिए, सुंदरीन सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? और मुझे बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, बड़ा कवि भी नहीं बनना। कई बार ऐसा होता है जो बड़े प्रवक्ता होते हैं, बड़े प्रवचन करने वाले, उनमें भी अहंकार आ जाता है। तो जो अहंकार आने पर जी पागल हो जाता है और वो भगवान से दूर चला जाता है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार मत हो गया मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रेरणा ये लेनी है कि मैं जीवन काल में भक्त बन जाऊं, भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। किसकी? इधर किसी ने, कोई माता ने कुछ कहा? क्या कहा? सेवा किसकी? कृष्ण की। और सेवा में ऐसी निष्काम, बदले में कुछ नहीं, आहितु की। आज हम जब सेवा भी करते हैं बदले में कुछ पारितोषिक ले लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं। सेवा थोड़ी है, वो नौकरी है। नौकरी से थोड़े भगवान मिलते हैं, भगवान भाव भक्ति और सेवा से मिलते हैं। तो ये प्रेरणा लो आप, पहचान तभी जाएगी जब भक्ति मांग की हम पर कृपा होगी। अंगद जी ने भी जाकर रावण को समझाया, लेकिन रावण मूर्ख समझ नहीं पाया। रावण नहीं समझा क्योंकि उसका विनाश का समय निकट आ गया है, अभी युद्ध आरंभ हो गया। अभी ये जो इंद्रजीत में बड़ी शक्ति थी, जो रावण का बेटा इंद्रजीत, उसने नागपाश नाग वाले बांध छोड़ दिए, उसमें दोनों राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया और अचेत कर दिया। अभी देखो जब रामानंद सागर की रामायण आती थी, सारी दुनिया देखती थी उसको, देखते थे। उसमें जब राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए तो लोगों ने बड़ा कहा भी वर्षी तो खाली लक्ष्मण को लगी थी, राम को नहीं लगी थी। फिर रामानंद सागर खुद आकर टीवी पर कहा था उन्होंने कि नहीं देखो ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यही तो असली रामायण है। उसमें वर्णन है कि राम लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। तो फिर राम लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो उनको बुलाया गया गरुड़ जी को। बोलो गरुड़ जी महाराज की। ये भगवान के पार्षदों की हम सब, हमको कृपा चाहिए। सब भगवान के साथ रहने वाले हैं, भगवान के साथ रहने वाले जो हैं वो हमें भी भगवान से मिला सकते हैं। तो गरुड़ जी ने आकर के राम लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया था, क्योंकि नाग जो है ना वो सारे गरुड़ जी से बहुत डरते हैं। नाग लोग बड़े डरते हैं। उससे उनको छुड़ाया इंद्रजीत ने, जो उनको बेहोश कर दिया था। फिर इंद्रजीत ने जो है लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया। इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो अभी राम जी बड़े घबरा गए कि मैं सुमित्रा को क्या कहूंगा। बड़ा विलाप करने लगे राम जी। तब वैद्य जी को लाया गया था, वैद्य जी सुशैन वैद्य जी। वो वैद्य जी जो थे वो लाए गए थे, बताओ आपको कहां से है? लंका से। बड़े अच्छे वैद्य थे। उनको सोए हुए ही हनुमान जी उठा के ले आए, और वो जो सुशैन थे उनने देखा लक्ष्मण जी को, तो उन्होंने कहा कि अभी ये इनको जो है संजीवनी की आवश्यकता है, संजीवनी ऐसे वहां से मिलेगी, इतनी दूर से कौन जाके ला सकता है। तो सबने हनुमान जी की तरफ देखा, तो हनुमान जी जो हैं वो संजीवनी ले आए थे, ला करके लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए। जब अब युद्ध हो रहा है, राक्षस मारे जा रहे हैं, हनुमान जी ने अकंपन जो पहले बच गया था, जिसने रावण की दुर्गति की थी, उसका हनुमान जी ने वध कर दिया। प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित आना, और नील के द्वारा प्रशस्त का वध हो जाना, प्रहसत के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना। अब पहले तकरीबन सारे मारे जा चुके हैं, कुंभकर्ण भी मारा जा चुका है, सब मार दिए भगवान ने। अभी आखिर में रावण स्वयं आया, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय। रावण की मार से सुग्रीव अचेत। अभी रावण और सुग्रीव जब आपस में लड़े तो सुग्रीव जी जो हैं वो अचेत हो गए। फिर लक्ष्मण जी युद्ध में आ गए ठीक होकर के। हनुमान और रावण में आपस में बड़े युद्ध हुआ, थप्पड़ मारे एक दूसरे को। रावण ने नील को मूर्छित कर दिया, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित होना, तो वो तो लक्ष्मण जी ठीक भी हो गए। श्री राम जी से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। अभी रावण फिर लंका में घुस गया, राम जी ने फिर उसको हरा दिया। पराजय से दुखी होकर रावण की आज्ञा से सारे ही उसने सब मरवाए। आखिर में रावण आया। अभी जब भविष्यन जी राम जी के साथ में हैं, देखो ये सब भगवान की नर लीला है, याद रखो इस बात को। भगवान की जो नर लीला हो रही है, तैयारी हो रही है नाटक की। हरिबोल हरिबोल, नाटक की तैयारी अभी एक नाटक की तैयारी भी हो रही है, इसलिए रास्ता बीच में रखा हुआ है। अब नाटक नौटंकी लोग नाटक यहां करेंगे, नौटंकी करते ना नाटक नहीं, तो आप उन नौटंकियों के लिए जगह छोड़ दो बीच में, इधर उधर हो जाओ थोड़े। तो बड़ा लंबा वृतांत है, नाटक करने वाले भी आ रहे हैं। आखिर भविष्यन जी ने जो है उनको बताया कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसके लिए इसकी नाभि में बाण मारो। ऐसा कहा है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का आदमी किसी को बताता कुछ भेद तो गड़बड़ हो जाती है। तो आखिरकार बड़ा युद्ध, बड़ा लंका कांड बहुत लंबा है लड़ाई का। अभी रावण को हम भी मार ही देते हैं, खत्म कर दी, समय कम है ना, मारते रावण को नहीं, एक सारा गंदखाना रावण का ही तो बचाया होगा। तो बहुत कुछ बड़ा वृतांत है। वैसे रावण को मैंने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन फिर और बड़े बीच में वृतांत आ रहे हैं। तो अभी रावण, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ रहा है, रावण पर राम जी को विजय प्राप्त नहीं हो रही। तो ये कुछ शिक्षा आप लोगों के लिए, क्योंकि अच्छी बातें बांटनी चाहिए दूसरों के साथ। तो तब अगस्त मुनि जी आए राम जी के पास। उनको राम जी को अगस्त मुनि ने विजय, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। तो आप लोग भी अगर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है आपने, तो क्या करना है, आदित्य हृदय। ये रामायण, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, छुपानी नहीं चाहिए ये चीजें। इसका पाठ करने से आपके जो शत्रु मतलब जो शत्रु मतलब अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं कि अगर आप गलत हैं और आपका शत्रु सही है तो उस पर विजय प्राप्त नहीं होगी आपको। हाँ, अभी जैसे राम सही है और रावण गलत है लेकिन विजय प्राप्त नहीं हो रही, ऐसी दिशा में आपको विजय प्राप्त होगी। ऐसे शत्रु पर जो बाकी शत्रु आपका ठीक नहीं, जो अच्छा नहीं है, जो गड़बड़ करने वाला है, आदित्य हृदय स्तोत्र आप सभी उसका पाठ किया करो। आई पढ़ा जब राम जी ने फिर स्तोत्र का पाठ किया आदित्य हृदय स्तोत्र का, फिर राम और रावण में बड़ा घोर युद्ध हुआ और अभी जो है रावण धराशायी हो गया, अमृत कुंड जो है उसके नाभि से सुखा दिया गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। यहां कि जब रावण मर गया, अभी मर रहा है वो पड़ा हुआ है, सबको मरवाकर रावण आखिर में मरा था, तो तब राम जी ने वैसे शिक्षा की ये बात है। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण आप जाओ रावण से कुछ उनके जीवन का अनुभव पूछ के आओ, क्या आपके जीवन का क्या अनुभव है। ये भी बड़ी शिक्षा की बात है, इसको कृपया सब ध्यान में रखो। ध्यान में क्या रखना है, तो लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी जाके रावण के सर के पास खड़े होकर कहते हैं, शिक्षक रावण कुछ बोलता नहीं। लक्ष्मण जी वापस आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु वो कुछ उत्तर नहीं दे रहा। फिर आप कहां खड़े थे, कहते सर के पास, कहते ये शिक्षा लेने का ढंग थोड़ा है, पांव के पास जाके खड़े हो। फिर लक्ष्मण जी आए पांव के पास खड़े होकर कहते हैं, विप्रवर रावण राक्षस था ब्राह्मण, कहते शिक्षा दीजिए कुछ। तो रावण कहता है, सबसे पहली मेरी शिक्षा ये है कि शुभ काम में देरी नहीं करना और अशुभ काम में अशुभ उसे जल्दी नहीं करना। शुभ काम में देरी नहीं करना और अशुभ काम में जल्दी नहीं करना। आगे वैसे ठीक ही किसी ने बनाया है दोहा, क्या बनाया है, शुभ काम के लिए कल करंती आज कर, बोलो आप अपना टांग दीजिए मत फंसाओ, मेरा सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में प्रलया होएगी फेर करेगा कब। समझाई, मिलता जुलता तो अपने अपनी टांग फंसा रहे थे ना, अपनी टांग नहीं फंसानी है। शाबाश, बहुत बड़े प्रेम से बोलो श्री राम भगवान की। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय। कुछ कह रहे हैं, क्या नाम आपका? राधिका किनाई दास जी महाराज कुछ कह रहे हैं। राधिका किनाई दास जी कहते समय लगेगा, समय तो लगेगा, अगर आप कहेंगे नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। बताओ क्या करना है, कितना समय लगेगा, रेडी हो गया रेडी है, कितनी देर का उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे अच्छा अभी ऐसा बीच में आपने नाटक देखना है फिर कथा जारी रहे या कैसे करना है, हैं? रथ यात्रा कैसे, बीच में नाटक नहीं देख लें, देख लें, चलो देख लें। और सुनो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना, घंटा लगाया था नहीं काम कर रहे हैं। श्री राम जय, राम जय जय राम, रखवा तेरा अभी रावण को राम भगवान ने मार दिया। आदित्य स्तुत हृदय जो स्तोत्र उसका पाठ किया था राम भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए। अभी भविष्य जी भी विलाप कर रहे हैं, रावण की स्त्री जो है वो भी विलाप कर रही है। रावण का दाह संस्कार हुआ, भविष्य का राज्याभिषेक हो गया, श्री राम द्वारा हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश तथा भविष्य के साथ सीता का श्री राम के समीप आना तथा श्री राम जी का सीता जी के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना। देखो यहां भी एक विचारने की बात आ रही है, अभी रावण मर गया, भविष्य जी को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। अरे वो तैयारी है, ये कौन हनुमान जी है कौन है? हनुमान जी क्या कर रही है, क्या बोलती है? राम स्तुति। राम स्तुति बोलनी है, चलो बोलो, माइक दे दो उधर से, एक और माइक दे दो। अच्छा सुनो, हरि बोल, कौन हो आप, क्या बने हो आप? हनुमान। चलो बोलो राम स्तुति उधर। अभी अगला सीन क्या आ रहा है? अगला सीन आ रहा है, देखो कैसा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कथा समाप्ति है तकरीबन, कथा तकरीबन समाप्त है नाटक के बाद में है। अरे कृष्ण क्या आ गया इसमें, इसमें क्या है? इधर और जो बच्चे को इधर कर दो,
चंद्र की लीलाओं से परिचित है। वन प्रवास में जब असुराधिपति रावण माता जानकी का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया तो श्री हनुमान ने समुद्र लांघ कर माता जानकी का पता लगाया तथा रावण की नगरी लंका चला कर वापस आए। हनुमान जी ने माता जानकी का संदेश भगवान श्री राम को सुनाया तथा उनसे प्रार्थना की।
प्रभु यथाशीघ्र लंका पर विजय प्राप्त कर माता जानकी को ले आई।
विभीषण की सलाह से भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा। समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। भगवान की पूजा कर उन्हें बताया कि
सर्वरक्षक राम अक्षरों का पूर्ण पर आपका नाम रखा होना चाहिए। अक्षर साल नहीं हो गई थी और आपका ध्यान सौ नहीं चाहिए। केवल भाग्य हो रही है परंतु सागर और पर्वत के सोने जी उस पल को बनाने में आपके सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे।
भगवान की आज्ञा से सभी बंदर एवं भालू पत्थर की शिलाएं लाकर इकट्ठा करने लगे और पुल का निर्माण शुरू हो गया। इसी लीला में एक छोटे से प्राणी की भी कथा जुड़ी है जिसे आप एक नाटिका के रूप में देखेंगे, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं कृष्णा किड्स क्लब के बाल कलाकार।
चलो शुरू करते हैं।
Thank you. कितना परेशान करें गंगा प्रभाव की सेवा के सामने मेरा सेवा की क्या गणना होगी। मैं भी सेवा करूंगी। प्रभाव में लौट कर अपने शरीर पर अपने दूर लाकर वहां लगाऊंगी।
यह गिलहरी इन बंदरों के समूह में क्या कर रही है? इस भीड़ भाड़ से दूर हट जा, नहीं तो किसी के द्वारा कुचल कर अपनी जान दे बैठेगी।
मैं तो आपको भगवान की सेवा करना चाहती हूँ।
पागल हो गई है क्या? अपनी जान की परवाह नहीं करती, चली है सेवा करने।
क्या बात है हनुमान जी?
प्रभु, यह नन्ही सी गिलहरी जान की परवाह किए बिना बीच में सुदक रही है।
कोई बात नहीं, उसे भी मेरी सेवा करने का उतना ही अधिकार है जितना आप सभी को। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी जीव मेरी सेवा कर सकते हैं। आपके द्वारा लाया गया पर्वत तथा उसके द्वारा लाया गया एक धूल का कण समान महत्व रखता है।
धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। आप कितने महान हैं। आपने एक छोटे से प्राणी की सेवा को भी कितना बड़ा स्थान दिया। निस्संदेह आपकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है।
भिन्न देहों को प्राप्त हुआ जीव भगवान की यथाशक्ति सेवा कर सकता है। शरीर छोटा या बड़ा हो सकता है, किंतु शरीर में रहने वाला जीव समान आकार का है। अपने शरीर की शक्ति अनुसार हर प्राणी भगवान की सेवा कर सकता है।
राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम
स्थानों पर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय नाटक वाले हमारे श्रोताओं को ले गए यहां से हैं, आधे श्रोता चले गए। चलो नाटक वालों का धन्यवाद। अभी समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। समापन अभी रावण का वध हो गया, यही मुख्य कार्य भगवान राम का था। अभी जब भविष्य ने श्री राम जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजा तथा भविष्य जी के साथ सीता का श्री राम के समीप आना, तब राम जी ने सीता के चरित्र पर संदेह किया। संदेह क्यों किया? क्योंकि सीता का हरण जो है वो रावण ने किया था, राक्षस ने सीता माता के दिव्य शरीर को स्पर्श किया था। लेकिन यहां पर यह वर्णन आता है, प्रभुपाद जी भी और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बताई है बात, जिस सीता को रावण उठा के ले गया था वो माया की सीता थी, असली सीता को कोई नहीं छू सकता। तो सीता माता जब राम जी ने संदेह किया सीता माता पर, तो माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए जो है ना स्वीकार किया। उत्तर देखकर बोल मेरी परीक्षा ली जाए, तो तब एक चिता बनाई गई, उस पर सीता माता बैठ गई और आग लगा दी गई उसको। तो क्या हुआ, जो माया की सीता थी वो आग में जल गई, लेकिन असली जो सीता थी वो वहां पर प्रकट हो गई। असली सीता जो है वो नीचे आई, तो राम जी ने उनको स्वीकार किया। तो सीता माता वैसे वो अग्नि की तरह, गंगा जल की तरह पवित्र हैं, परम पावन हैं। राम जी ने इसलिए किया कि लोगों को, लोगों के मनों में ऐसी शंका ना हो।
अरे बोल, धोबी का वरदान था सर, धोबी का वरदान था है, धोबी नहीं है,
तो खैर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक रामायण में उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ी प्रचलित है वो रामायण, उसमें ये कहा है कि ब्राह्मण जो है कैसा भी है, कितना भी पतित है, उसको पूजना चाहिए। कितना भी पतित है वो उसको पूजना चाहिए। शूद्र जो है कितना गुणवान है उसको नहीं पूजना चाहिए। क्या ऐसा लिखना ठीक है, बोलो बोलो। गीता के विरुद्ध है ये, भागवत के विरुद्ध है। गीता से कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, भगवान की वाणी, और भागवत भगवान वेद व्यास ने लिखा है। तो ये, और उन्होंने ये लिखा है कि ऐसा संत कहते हैं, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब देखो कि गीता में भगवान ने बताया है, चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने जो चार वर्ण और चार आश्रम बनाए ये गुण और कर्म से बनाए, जन्म कर्म से नहीं कभी कहा। लेकिन कलयुग में जो जन्म के ब्राह्मण हो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो काम सब कसाईयों के ही करते हो, कहते जी हम ब्राह्मण हैं। तो ये बड़ा दोष आ गया, क्योंकि जो उनके उनमें ब्राह्मणों के गुण तो है नहीं, और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, इसलिए समाज में गड़बड़ हो गई सारी। एक रामायण आप खुद ही समझ सकते हैं, वो कौन सी रामायण है जिसमें ऐसा लिखा है। किसी को जानना होगा मैं दोहा भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा कहां पर लिखा है। बहुत बड़ी गलती है वो, आम लोगों को, जनता को इस बात का पता नहीं है, इसलिए हमारे समाज में बड़ी गड़बड़ी है, शुद्धि खत्म हो गई है। लेकिन हम कृष्ण भगवान के बड़े आभारी हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिन्होंने गीता यथारूप दे दी, भागवत यथारूप दिया, सारे ग्रंथ यथारूप दिए हैं। इनका अनुसरण करने से, इन पर चलने से, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करने से हम लोग शुद्ध बन सकते हैं, सब लोग अच्छे हो सकते हैं। और भागवत में भी जाति पाति का बिल्कुल खंडन है। एक श्लोक आता है भागवत में कि रात हुंदन पुलक यवन खसा, ये जातियां बताई हैं पाप जाति की। ये जो पाप जातियों के भी लोग, अगर ये वैष्णव की शरण लेते हैं तो ये भी शुद्ध हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी परम वैष्णव हैं, बोलो परम वैष्णव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने मृत जवनों को शुद्ध किया, कई जो नाम के ब्राह्मण है भारत में वो स्वीकार नहीं करते इसको, लेकिन आधार भागवत है और भगवत गीता है।
तो आज लोग रामायण के पाठ तो करते हैं लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि उन रामायण जो लेखकों ने तोड़ मरोड़ कर लिखा है उसको ठीक नहीं लिखा, यथारूप नहीं है। वाल्मीकि रामायण यथारूप है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, जैसे मैंने पहले ही बताया वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की और ये रामायण बहुत दिव्य है। यथारूप बदलो नहीं, क्योंकि जैसे चार दोष मैंने आपको बताया, चार दोषों से हम भरे हुए, हम लोग भगवान के शब्दों को नहीं बदल सकते। ये अपराध हम लोग हिंदू आम कर रहे हैं, इसलिए हमारा धर्म पीछे जा रहा है। अगर अपने धर्म को बचाना है, अपनी हिंदू जाति सनातन जाति को बचाना है, तो प्रभुपाद कृपा से चैतन्य भगवान के चंद चिन्हों पर चलना है। चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायी मुसलमान थे, जैसे हरिदास ठाकुर जी जन्म से मुसलमान है। कैसे हरिदास जी थे, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, शिला रूप शिला सनातन थे, वैसे ब्राह्मण पर मुसलमान बन गए थे मुसलमानों की नौकरी करने के कारण। उनको आचार्य के पद पर स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। इसी से मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमारा मंगल हो सकता है, और हमारे मंगल का कोई रास्ता नहीं है। हमारा मंगल चैतन्य निताय की कृपा से हो सकता है। तो समापन की ओर आगे, महादेव जी की आगे से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना तथा दशरथ जी का दोनों पुत्रों एवं सीता के को आवश्यक संदेश देकर इंद्रलोक को प्रस्थान करना। तो यहां पर जब विजय प्राप्त हुई तो स्वर्ग लोक से इंद्रलोक से दशरथ जी महाराज आए और उन्होंने भेंट की राम और लक्ष्मण से, उनको विशेष संदेश देकर के दशरथ महाराज पुनः इंद्रलोक को यानी कि स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो दशरथ जी महाराज की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मैं आपको बता रहा था रावण के पास लक्ष्मण जी आए शिक्षा लेने के लिए, पहले मना कर दिया, फिर राम जी ने बोला जाओ पौं के पास खड़े होकर शिक्षा लो। तो रावण ने अपना अनुभव क्या बताया कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करना, अशुभ काम में कभी जल्दी नहीं करना। शुभ काम जो कल करना, कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में प्रलया होएगी फेर करेगा कब। तो शुभ काम जल्दी से करना है, अशुभ काम को टालना है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपका क्या अनुभव इस विषय में। रावण ने कहा मेरे में इतनी शक्ति थी, मैंने इसी देह के द्वारा स्वर्ग लोक में चले जाना था, मैंने
नड़ीनुए सीढ़ियां बनाई थी, नड़ीनुए 99, एक सीढ़ी की कमी थी। शुभ काम था, मैंने सोचा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, आज मेरा सर्वनाश हो गया, नहीं किया। अगर मैंने एक सीढ़ी बना दी होती, इसी सीढ़ी से मैंने स्वर्ग में चले जाना था। अशुभ काम में देरी, सीता को चुराना था, कोई विचार नहीं किया मैंने, एकदम ये कार्य कर डाला। उसके फलस्वरूप क्या होगा, आज मेरा सर्वनाश हो गया। रावण कहता है मेरे कुल में आज मुझे पानी देने वाला कोई नहीं है, मेरा सारा परिवार मर चुका है। ये क्या है, क्या कौन सा उसमें रामायण में? तो रावण कहता है आज मेरे लिए प्रलय हो गई, मैंने अशुभ काम को जल्दी कर दिया। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, मेरे बड़े प्रेम से मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो अच्छा काम हो, शुभ काम हो, देरी मत करो। लोग आपको रोकेंगे, नहीं अभी नहीं करो, बाद में करो। पहली जो प्रेरणा होती है वो अंतरात्मा से होती है, दूसरी प्रेरणा मन से होती है। जिसका जैसा मत है वो अपना वैसा मत व्यक्त करता है, ये तो मत ततो मत। जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहन रखा है वो वैसी बात करेगा, कोई भी अच्छी बात नहीं करेगा। अच्छी बात वो कौन करेगा जो भगवान का भक्त होगा। तो अगर राग द्वेष का चश्मा पहने हुए लोगों की बातों में हम आगे, तो हमारी भक्ति वृद्धि नहीं होगी, हमारी भक्ति वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना। तो जो बानर मर गए थे, राम जी के अनुरोध पर इंद्र ने उस मरे हुए सारे बानरों को जीवित कर दिया और पुष्पक विमान से राम भगवान अयोध्या में आ गए। हनुमान जी ने निषाद राज गुहू को और भरत जी को संदेश दे दिया कि राम भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। अयोध्या में राम जी का स्वागत, नगर यात्रा तथा श्री राम जी का राज्य अभिषेक, बानरों को विदाई। भगवान ने बानरों को विदा किया, सबको पारितोषिक दिया, सबको इनाम दिए गए। इनाम जब दिए तो हनुमान जी की बारी आई इनाम की। तो माता जानकी कहती है हनुमान जी को इनाम मैं दूंगी। तो एक ऐसा वर्णन आता है, श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का गम करते हैं गुरुदान। जब देवलोक पर रावण ने कीनी कबार चढ़ाई थी, मनियों की सुंदर माला जब उसके हाथों में आई थी। रावण ने एक बड़ी मनियों की सुंदर माला, बातें कर रहे हैं, और मनियों की सुंदर माला रावण के हाथ में आ गई। और रावण जब मर गया, माला भविष्ण जी के पास आ गई, अनमोल मणियों की माला। भविष्ण जी अभी जब राम भक्त हैं, उन्होंने वो माला जो है राम जी को अर्पण कर दी। राम जी ने वो माला सीता माता को दे दी, अनमोल मणियों की माला। देखो भक्त कैसा होता है, इस दृष्टांत से थोड़ा सुनो समझो।
तो माता जानकी क्या करती हैं कि वो मणियों की सुंदर माला क्या कहते हैं पारितोषिक के रूप में इनाम के रूप में किसको देती हैं?
हनुमान जी को।
हनुमान जी को जब दी तो बड़ी सभा सारी बैठी हुई है। हनुमान जी बड़े शुद्ध भक्त हैं। हनुमान जी के स्वरूप यहां हनुमान जी भी आके बैठ गए हैं पीछे। ये पहले इनका नाम इनका हनुमान रखा था, लेकिन शरीर इनका हनुमान जी जैसा नहीं था। अब इन्होंने शरीर भी अपना हनुमान जी जैसा बना लिया है। देखो बोलो राम भक्त हनुमान की। तो हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि दोनों में बहुत ज्यादा बल भी है और बुद्धि भी है। हनुमान जी जो हैं वे क्या करते हैं कि माला को देखते हैं। देख सौदे हनुमान जी क्या देख रहे हैं इसमें? कोई ढूंढ रहे हैं माला के बीच में मणि। एक एक मणि अनमोल है, उसका मूल्य अंकन नहीं हो सकता। एक मणि को लेते हैं हनुमान जी, दांत के नीचे दबा कर तोड़ते हैं, तोड़ करके फेंक देते हैं। दूसरी मणि तोड़ लेते हैं, तोड़ते हैं फेंक देते हैं। तीसरी चौथी अनमोल मणि तोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हनुमान जी की लीला कौन जाने। इतनी देर में भविष्य जैसे रहा गया। भविष्य जी कहते हैं कि बंदर को अदरक की है पहचान कहां। बंदर क्या जाने अदरक क्या चीज है। ये बंदर जो है ये अनमोल मणियों की माला तोड़ रहा था। भविष्य जी उठे, हनुमान जी क्या कर रहे हो आप गुस्से में? कहते हैं इन माला के मनकों में मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। अच्छा अच्छा इन मालों के मनकों, क्या आपके हृदय में राम है? कहते हैं जरूर है। कह दिखाओ। छाती है हनुमान जी छाती फाड़ करके सीताराम वहां भी बैठे और यहां भी बैठे हैं। तो भक्त किसी चीज के पीछे नहीं जाता, भगवान के पीछे जाता है। उसी को भगवान मिलते हैं। जो किसी चीज के पीछे जाता है, चाहे वो स्त्री है, हैं? अभी पुरुष स्त्री के पीछे जाता है, स्त्री माया के पीछे जाती है ना? यही है ना कलयुग में। बढ़िया साड़ी चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, सिनेमा देखने के लिए चाहिए, हैं? और फिर जल्दी नर्क भी चाहिए, फिर नर्क जाना ही पड़ेगा। हाँ हनुमान जी की तरह अगर भक्त बन गए हम, मैं मुझे सिवाय राम जी के कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी वाकई बड़े महान भक्त हैं। तो फिर राम जी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। अगर किसी भौतिक चीज की चाहना हमने की तो फिर मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं भगवान नहीं मिलेंगे। और याद रखो जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को मिलना है। और जो कुछ भी हमने समझ रखा है ये हमारे मूर्ख मन की उपज है, हमारे मलिन मन की उपज है। मन बड़ा मलिन है, इससे बड़ी गंदगी भरी है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं। वैसे अंदर से भगवान प्रेरणा भी करते हैं। भगवान प्रेरणा करते हैं कि देखो संसार में कुछ नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। कोई भगवान की शरण में भी आ जाता है लेकिन दूसरा आके कहता है क्या भाई कहां जा रहे हो तुम, छोड़ो इधर ही रहो, मैं नहीं गया तो तू कहां जा रहे हो। हाँ तू नहीं गया तो मुझे क्या जाना, मेरी यही बात है। तो बड़ा कलयुग का बड़ा प्रभाव ऐसे भीषण है। तो एक बार क्या हुआ, रामनवमी मनाई जा रही है। क्या मनाई जा रही है? बोलो रामनवमी महामहोत्सव की। जैसे यहां मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से, रामनवमी का महामहोत्सव मनाया जा रहा है। तो सारे राजे महाराजे बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, ऋषि मुनि बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, सब बैठे हैं, सब राम जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी जा रही है। वैसे रामचंद्र जी बड़े अच्छे श्रृंगार में हमारे पास बैठे हैं, खड़े हैं। वैसे सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के बैठे हुए हैं। तो एक राजा, क्या नाम था उनका, महेंद्र, महेंद्र नाम के राजा आए, राम जी को प्रणाम किया, उनकी वर्षगांठ पर उनको बधाई दी, जो ऋषि समाज बैठा था सबको प्रणाम करने लगे। जब वो प्रणाम करते करते राजा महेंद्र उनके पास पहुंचे, नारद जी के पास, नारद जी के पास जब पहुंचे तो नारद जी कहते हैं राजा महेंद्र को कि देखो कि जो विश्वामित्र है ना, कहते हां, कहते इसको प्रणाम नहीं करना। कहते क्यों? कहते ये तो पहले एक क्षत्रिय था, वैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ऐसे ब्राह्मण बन गया है ये, ऐसे ही है, प्रणाम नहीं करना। तो अभी इस घटना से देवऋषि महाराज कुछ प्रकट करना चाहते हैं, हम सबको सिखाना चाहते हैं। उन्होंने जो है विश्वामित्र जी को छोड़ दिया, साथ में दूसरे बैठे हुए ऋषि को प्रणाम किया। जब विश्वामित्र जी का अपमान हो गया ना, जब छोड़ दिया तो विश्वामित्र जी एकदम खड़े हो गए, बस वो रंग में भंग पड़ गया, क्रोध में खड़े हो गए विश्वामित्र जी। हां ऋषिवर, क्या बात? देखो ये तुम्हारा अतिथि महेंद्र, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया। हां इसकी गलती है महाराज, क्षमा कर दो, आज मेरा ये अतिथि है, कल मैं इनको दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा, गुस्से में बड़े विश्वामित्र, क्रोध जब किसी को आया जाए बड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी इतना अच्छी रामनवमी मनाई जा रही है, राम भगवान उपस्थित हैं, लेकिन रंग में भंग पड़ गया। तो विश्वामित्र जी जो है ना, वो शांत नहीं हो रहे, आकर राम जी को यह कहना पड़ा, ऋषिवर मैं आपको हनुमान की सुगंध उठा के वचन देता हूं, कल मैं राजा महेंद्र को प्राण दंड दूंगा। क्या करूंगा बोल दो आप भी, आप प्राण दंड से डरते हो सारे? अरे मृत्यु हम सबकी आएगी, मृत्यु को सिमरन करो, उसको देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दर्शन करने के लिए क्या भगवान ने। अभी विश्वामित्र जी शांत हो गए, उधर महेंद्र जी घबरा गए, पर ये क्या हो गया, कल मुझे राम जी तो प्राण दंड देंगे, जैसे मैंने बताया था ना आपको, देखो जिसके भी बच्चे हैं कृपया शांत रखो उनको, बच्चों का शोर नहीं होना चाहिए। तो अभी महेंद्र जी घबरा गए, कल मारा जाऊंगा। राम जी जो वचन करते हैं वो पूरा करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने ये भी बताया था ना, हमारे कुल की भी रीत है, हमारे कुल की रीत ये चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। हम गप्पे मार देंगे लेकिन प्राण बचे रहे, तो प्राण कब तक बचेंगे, तो बचने वाले हैं नहीं, ये तो जाने वाले हैं, एक दिन प्राण तो चले ही जाएंगे। तो अभी दूसरे दिन हुआ, राम जी ने धनुष मान लेकर महेंद्र के खोज में चल पड़े, कहां महेंद्र जी, प्राण दंड देना, मारना, मैंने वचन दिया है। उधर से महेंद्र जी नारद जी के पास आ गए, कहा कि महाराज ये क्या कर दिया आपने, आज मैं मारा जाऊंगा। देखो ऐसा है, तुम जाओ हनुमान जी फलानी जगह पर बैठकर राम जी का भजन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कहते क्या करना मुझे, आप चले जाओ हनुमान जी के पास। वो घबराए, कहा मैं मारा जाऊंगा, राम जी मार देंगे मेरे को, वहां जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पण कर दो, हनुमान जी को कहो कि मेरी रक्षा करो। वो पूछे बात क्या, कहते पहले वचन दो आप मुझे कि मेरी रक्षा करोगे, फिर बात बताना। ट्रेनिंग दे दी ना नारद जी ने, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की, कहा कि मरता क्या नहीं करता, महेंद्र जी भागते हुए आगे जहां हनुमान जी भजन कर रहे थे चरणों में गिर गए, कहा त्राही माम शरणागतम शरणागतम मैं आपकी। हनुमान जी पूछते क्या बात है, कहते मुझे महाराज शरण में ले लो। बोलो क्या समस्या क्या आपको, कहते महाराज मुझे वचन दो कि मेरी आप रक्षा करोगे। वचन देता हूं थे हैं मुझे वचन दो, वचन देता हूं मैं आपकी रक्षा करूंगा। शरणागत वत्सल भगवान है, शरणागत वत्सल उनके भक्त भी वैसे ही हैं। भक्तों की शरण में जाओगे वो भी स्वीकार करेंगे, सच्चा भक्त कभी तिरस्कृत नहीं करेगा आपको, आपको दूर नहीं भगाएगा। कहते मुझे महाराज अच्छा ठीक है। हनुमान जी कहते हैं राम जी की सुगंध उठाकर आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपका सहयोग करूंगा। बोलो क्या समस्या है। मेरी समस्या ये है कि राम जी ने कल प्रतिज्ञा की थी कि आपकी सुगंध उठाकर मुझे उन्होंने आज मारने का वचन किया हुआ है। कहते आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कि जब बताता तो फिर मेरी रक्षा कैसी होती। अच्छा मैं वचन दे चुका हूं अभी। इतनी देर में राम भगवान महेंद्र के खोज में निकल पड़े, उनको पता लगा कि महेंद्र ने हनुमान जी की शरण ले ली है, हनुमान जी ने राम नाम की शरण ले रखी है। हनुमान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान हां प्रभु इस महेंद्र को छोड़ दो। कहते प्रभु इसे कैसे छोड़ू मैं। कहते क्यों, कि मैंने आपकी सुगंध उठाकर इसको शरणागति दी है। पर हनुमान मैंने तुम्हारी सुगंध उठाकर इसको मारने का वचन किया है। कहते फिर राम आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। राम हनुमान युद्ध शुरू हो गया। राम भगवान बाण चला रहे हैं, राम भगवान बाण छोड़ रहे हैं महेंद्र को मारने के लिए, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय राम रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी जितने वचन छोड़ अपना बाण छोड़ रहे हैं ना, वो हनुमान जी की गदा में घुसकर कोई उनका असर ही नहीं हो रहा। आकाश मार्ग में सारे देवता लोग एकत्रित हो गए, भाई किसकी विजय होगी, राम हनुमान के युद्ध में कौन जीतेगा, सब देख रहे हैं। महेंद्र जी हनुमान जी के पास हैं, विश्वामित्र जी वहां आ गए, उधर नारद जी भी हैं, सारे इकट्ठे हो गए। राम जी अपना वचन पूरा कर रहे हैं, बांध छोड़ रहे हैं। उससे विश्वामित्र जी संतुष्ट हैं कि भाई मारने का प्रयास तो कर रहे हैं, हम नहीं मर रहा तो इनका क्या दोष है, दोष क्या है। देखो यहां इस कथा इस प्रसंग से बहुत सीखने की बात है, रामनवमी का ही प्रसंग है ये। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, क्या हुआ कि अभी देव ऋषि जी नारद जी ने महाराज ने देखा कि परिस्थिति बड़ी भीषण हो रही है, तो झट उन्होंने महेंद्र को कहा जाओ भाई ऐसा है अभी आप विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर उनसे माफी मांग लो। महेंद्र जी झट आए और विश्वामित्र के चरणों में गिर गए, कल मैंने गलती से आपको प्रणाम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। तो ऋषि मुनि क्षमा कर देते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी रात। बड़ों को हमेशा क्षमा करना चाहिए, छोटे तो गलती करते ही रहते हैं। खैर मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने जब क्षमा कर दिया तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी को कि हे राम इसने अभी क्षमा मांग ली, अभी तुम छोड़ दो इसको। इस प्रसंग से क्या सिद्ध हुआ, सबसे बड़े भगवान और भगवान से बड़ा भगवान का नाम और नाम से बड़ा नाम लेने वाला भक्त, यह सिद्ध हुआ इस प्रसंग से। हनुमान जी ने नाम के प्रताप से राम जी से भी रक्षा कर दी। उनकी शरणागत वत्स। तो ये बात सिद्ध की किसने? नारद जी ने। नारद जी ने बताया सबको कि नाम की शरण लो और भक्तों की शरण लो। भक्तों की शरण होगी तो भगवान जी कुछ नहीं कर सकते। ये प्रसंग है। तो ऐसे भक्तों की शरण लो, ये जो कृष्ण जी को देख रहे हैं ना, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। आप निसंकोच इनकी शरण लो। इन्होंने हमको बड़े बड़े विशेष अनुभव करवाए, उसी के बल पर हम आपको कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, लोग नए आए हैं, नए सत्संग में आते रहते हैं। खड़े हो जाओ। ये देखो, ये श्रीमान जी श्रीमन इंद्र अनुज दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, है ना, तो शादी नहीं करेंगे, ये ब्रह्मचारी रहेंगे। एक और था, हमारी शरण में आया, मैंने कहा तू भी ब्रह्मचारी रहा, कहते नहीं मैंने शादी करनी करनी है। मैंने अच्छा भाई, करनी तो कर लेना, लेकिन अभी कहते हैं जी बस बड़ा मैं फंस गया, मुंह माया फंस गया मैं अभी। एक और था, उसको भी कहा मैंने शादी नहीं करनी, कभी नहीं करनी है। मैं कर फिर करनी है तू। अभी मैंने कैसी ये शादी करनी, क्या चल रहा? कहते मेरा डिटर्मिनेशन खत्म हो गया। डिटर्मिनेशन ही खत्म हो गया, डाउन हो गया बेचारा। कलयुग है, बड़ी हालत खराब है। तो इंद्रनोज जी को बड़े बीमार हो गए, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। पहले मैंने बताया था, नए लोग होंगे, फिर दोबारा बता रहा हूं, ब्रेन हेमरेज हो गया कोई 3.5 साल पहले, और ये कोमा में चले गए, बेहोश हो गए। मैं वृंदावन में था, वृंदावन से मुझे एक फोन आता है, इनकी गुरु बहन वो भी डॉक्टर है, कहती है महाराज प्रभु जी बड़े बीमार हो गए, तो उनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन से क्या होगा? कहते हैं उनको उनकी आवाज भी जा सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। मेरे मंदिर से परमात्मा ने प्रेरणा की, मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन, आवाज चली गई पैरालिसिस होगा, बेकार हो गया, नहीं क्या करना ऐसा ऑपरेशन। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करना, हमने इनसे प्रार्थना की। किन से? इनके श्री चरण में प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभुपाद ये आपका बच्चा है, हैं? इसने समर्पण किया है तो इसके रक्षक आप हैं, और इनकी प्रभुपाद की प्रेरणा से हरि नाम, अखंड हरि नाम शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी के जितने आश्रम हैं सभी में अखंड हरि नाम प्रारंभ हो गया। अखंड हरि नाम प्रारंभ हो गया, सारे भक्त करने लगे। जैसे अखंड हरि नाम प्रारंभ हो गया, प्रभुपाद जी ने प्रार्थना सुन ली, दूसरे दिन से ही श्रीमान इंद्र अनुज दास जो खुद ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो गए। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी वन पीस आपके सामने खड़े हैं जी। ये संत आज भी विद्यमान है। मैं आपको ये किस लिए कह रहा हूं? इनकी शरण लो। आज भी यही पर आई है, कईयों को दर्शन देती हैं, कईयों से बातें करते हैं। तेरे को हुए ना दर्शन? कितनी बार? 3-4 विश्व को भी प्रभुपाद जी के दर्शन हुए हैं। तो ये संत कृपा करके आए हैं, शुद्ध हृदय से इनकी शरण लो। ये आपको पसंद तब करेंगे जब आप निष्काम भाव से सेवा करोगे इस आंदोलन की। कोई कामना नहीं, अगर आप तनख्वाह लेके काम कर रहे तो आप नौकर हैं, भक्त नहीं हैं, आप नौकर हैं। ठीक है, भगवान की नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम भी जपने को, पर जो आपने सेवा की उसके बदले में आपने पारितोषिक ले लिया, इनाम ले लिया या पैसा ले लिया, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है वो निष्काम है, आहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। बिना किसी हित के भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो जीवन हमारा बदलेगा, भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अगर भक्ति नहीं करते तो हमारा भविष्य अंधकार में है। तो मैं और आगे ना बढ़ता हुआ, कहने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, पूरे 12 बज के 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट, 12 बज के 2 मिनट हो गए हैं।
अभी अभिषेक में आगे वैसे बड़ा रश है वहां लाइव मेंबरों का, तो मुझे यही कहा गया था कि आप जो हैं थोड़ा ज्यादा कथा को कहना, अगर आप सब लोग वहां पहुंच के बड़ा रश हो जाएगा, इसलिए कथा थोड़ी लंबी हुई। अभी आप सब कृपा करके अब अभिषेक के लिए चलो, भगवान सीताराम लक्ष्मण जी का हनुमान जी का अभिषेक देखो, उनकी कृपा की याचना करो, वो सब पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक मिनट माता जी रुको एक मिनट, मैं जब बोल रहा हूं तो आपने उठना है मेरे समाप्ति के बाद, बैठ जाओ एक मिनट के लिए, बैठो सब बैठो। आपने प्रार्थना ये करनी है भगवान से कि हे कृष्ण, हे राम भगवान, हे सीता माता, हे राधा माता, हे गौर निताय, बस मुझे अपने श्री चरणों की सेवा दे दो। आज सेवा मांगनी है उनसे, उनकी भक्ति मांगनी है, और कुछ नहीं मांगना। अपने लिस्ट में रख देना उनके पास जाकर के, मैंने आज आपका अभिषेक देखा है और थोड़े बहुत एक दो रुपया भी चढ़ा दिया यहां पर है, बस ये मेरी लिस्ट आप जो है ना सप्लाई कर देना पूरी। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, वो ऑर्डर गिवर है, आदेश देने वाले आदेश सुनने वाले नहीं है, जो करना होगा वो जानते हैं, बस यही उनसे मांगो कि हमें सेवा दो। माता जी आपको भी कहा मैंने, सबको ही कहा, आप क्यों जा रहे हो? तो भगवान से यही मांगना, भक्ति मांगना उनसे। क्या मांग रहे हैं भगवान से? क्या मांगना है? आप चुप रहो, माताएं बोले क्या मांगना है?
भक्ति।
क्या मांगना है? माता कहते हैं भक्ति, भक्ति। अच्छी तरह बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या मांगना है? अच्छा अभी आप बोलो, आप चुप रहो, क्या मांगना है?
भक्ति।
ठगती नहीं, निष्काम सेवा मांगनी है भगवान से। क्या मांगना है? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। श्याम जी का प्यार और भक्ति चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। तो हम यहां के कार्यकर्ताओं का, विशेष करके ब्रजहरि जी का, जिन्होंने बड़े भाव से हमको बुलाया, हम बड़े बीमार थे, मैं चिंता में पड़ गया भाई, ठीक गला खराब हो गया, गला पक गया था मेरा, 15 दिन तक बीमार रहा, कभी इतना गला खराब नहीं हुआ। माता सीता से, अपने गुरुदेव की कृपा से, राम भगवान से प्रार्थना की, विशेषकर सीता माता, माता जल्दी सुन लेती है, माता आपकी कथा जैसे भी हमने अपनी तोतली भाषा में गायन करना है, कृपा करना, तो माता ने गला ठीक कर दिया, या जैसे वैसे भी 4 दिन आपको कथा सुनाई। हमें आशा है कथा में त्रुटियां तो बहुत होंगी, त्रुटियां थी ना, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, अच्छा हो तो साथ ले जाना, कोई अच्छी बातें साथ लेना, आप अगर बोलने में कोई कमी हो तो उसे हमें दे देना वापस, लेकिन अच्छी बात को नहीं वापस करना, ठीक है? और भक्ति पथ में आगे बढ़ना, अगर आप सब लोग भक्ति में लग जाओ, सभी माताएं लग जाएं, तो आप एक से एक दो 11 चल रावण तेरी पांव मारा, रावण ने बोला मैं अकेला जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, चलो मारीच को साथ ले जाता हूं। तो अगर आप भक्ति का प्रचार करेंगे, 1 से 11 बनेंगे, 11 से 22 बनेंगे, 22 से 44 बनेंगे, ऐसे भक्त बढ़ते जाएंगे। भक्ति को बढ़ाओ, भक्तों को बढ़ाओ और भारत को बचाओ। तो यहां के कार्यकर्ताओं को असीम कृष्ण जी का, असीम जी हैं या भाग्य हैं, असीम कृष्ण जी का, और साथ में ब्रज भक्ति, ब्रज प्रेम, ब्रज भक्ति जी का, और आप सबका जो रोज आते रहे, आप में से कितने रोज आते थे हाथ खड़ा करो, रोज सब नहीं आते थे, थोड़े आते थे, तो जो रोज आते थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो रोज नहीं आते थे आज आए उनका भी धन्यवाद। तो आप सबका भी धन्यवाद, यहां के कार्यकर्ताओं का, प्रबंधकों का, सबका धन्यवाद। विशेष करके हम अपने गुरुदेव का आभार प्रकट करते हैं, जिनकी कृपा से हम आपके सामने उपस्थित हैं, कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम माता जानकी का, सीता का करते हैं, जिनकी कृपा से हमें, हम निरोग हुए, और कुछ बोलने में सक्षम हो सके। वैसे सीता राम लक्ष्मण और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारा हनुमान जी के प्रति है। हनुमान जी भक्ति के दाता हैं, भक्तों के रक्षक हैं। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी आप शांति से जाकर के अभिषेक के दर्शन करो और पुण्य के भागी बनो।